ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना मई की जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय श्री गोपेश्वर महादेव की जय श्री वृंदा देवी की जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय श्री ललिता विशाखा की जय श्री सुबल उज्ज्वल की जय श्री लाडली लाल की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री बरसानानंद खां वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे श्याम हरे कृष्णा। तो कल के कथा को आगे बढ़ाते हुए अभी हम फिर मथुरा की ओर आते हैं। तो मथुरा में कंस का आतंक चल रहा था। कैसा है ना कि कृष्ण भगवान का गौरव करने के पहले थोड़ी कंस की महिमा भी सुननी चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि कृष्ण भगवान आए अखाड़े में आए एक मुक्का मारा मर गया वो, मतलब बहुत कमजोर था वो, एक मुक्के से बालक के हाथ से मुक्के मर गया। इतना बड़ा क्या, बालक के हाथ से मरने वाला आदमी पराक्रमी थोड़ी हो सकता है, क्यों इतना लोग उसका बखान करते हैं, क्या ताकत थी कंस के अंदर। उससे अच्छे वो थे चाणूर मुष्टिक, बहुत पहलवान थे वो, ये तो आदमी लड़ा भी नहीं कृष्ण से। तो ये गलत फहमी दूर करने के लिए भर्ग संहिता में कंस के दिग्विजय के दो तीन अध्याय दिए हुए हैं। कंस कौन था फिर आपको पता चलेगा कि कृष्ण कितने महान थे। हा? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मैं कि रावण जो है ना वो कंस के सामने कुछ भी नहीं था। रावण तो कई बार हार चुका है, सहस्त्र वीर अर्जुन से हार चुका था, विविध क्या कहते हैं उसको, बाली ने उसको कांख में दबाकर 6 महीना भजन किया था, बोलो 6 महीना जाप किया था 16 माला रोज तो भी ये समुद्र से वो समुद्र उड़ता था वो, कई जगह बदली उसने और कांख में उसको दबा के रखा था रावण को। और रावण ने वो जो था ना शिव धनुष जो जनक महाराज के दरबार में था, वो जनक महाराज के राज्य का बहुत बड़ा गौरव था, वो रावण उसको ना हिला भी नहीं पाया, बोलो ही कुड नॉट इवन मूव। और वो शिव धनुष था, और ये हमारे कंस महाराज जो है ना वो दिग्विजय में वो महेंद्र पर्वत पर गए थे। अरे कंस ने महेंद्र पर्वत जिस पर परशुराम महाराज बैठे हुए हैं तपस्या करने के लिए उसको 100 बार उठाया, 100 बार उठा उखाड़ा उसको, तब परशुराम जी परेशान हो गए और देखा तो कंस महाराज यहाँ पर उखाड़ रहे उसको, तो वो ना आए और बोले अपने बल पर तुमको इतना गर्व है ये लो, ऐसा करके विष्णु का धनुष उसकी ओर फेंका। वो धनुष परशुराम जी महाराज को पृथ्वी का संहार करने के लिए उन्होंने अवतार लिया ना, छठा अवतार भगवान का, तभी विष्णु भगवान ने उनको अपना धनुष दिया था, विष्णु धनुष, वो भी पूर्णतः शक्तिशाली है। और वो धनुष से उन्होंने 21 बार पृथ्वी में क्षत्रियों का संहार किया। वो धनुष ऐसे फेंका, वो ना शिव धनुष से कई गुना मजबूत और वजनदार और बड़ा था, वैसा फेंका तो कंस ने झेला उसको, बोलो। तो परशुराम जी ने कहा कि इस धनुष के ऊपर आप प्रत्यंच चढ़ाओगे ना तो मैं मानूंगा कि तुम बलवान हो। अरे कंस ने उस पर 100 बार प्रत्यंच चढ़ाई और टनककार किया उसका, पृथ्वी पूरी पृथ्वी और पूरी ब्रह्मांड गूंज उठा उससे, मानो प्रलय का प्रलय की ध्वनि हो रही है ऐसा आवाज उठाया। तो परशुराम भी ऐसे क्रोधित व्यक्ति है, लेकिन वैसे भी बहुत प्रसन्न हो गए वो कंस को देखकर, अरे बढ़िया आदमी है, इतना शक्ति है उसके अंदर, तुझे ले ले, तेरे लिए गिफ्ट देता हूँ उसको, अपने पास रख ले उसको। और वो विष्णु का धनुष जो है ना, वो उसको गिफ्ट में दे दिया, ऐसा था कंस। अभी वो जो धनुष था ना, वो जो रावण ने उठाने का कोशिश किया था, वो विष्णु और शिव जी के युद्ध में वो शिव धनुष शिव जी ने यूज किया था, और विष्णु ने युद्ध के बीच में हुंकार किया करके, तो वो धनुष शिथिल हो गया था, इट्स लाइक इट गॉट पैरालाइज्ड। धनुष था लेकिन वो अपने आप में उसका बल नष्ट हो गया, बलहीन हो गया वो धनुष था उनके पास, और ये बलहीन नहीं हुआ था, और था भी विष्णु का धनुष, डबल दृष्टि से शक्तिशाली था, उसको रखा नहीं गया था उठाने के लिए, अरे भाई आके उठा ले उसको, नहीं, परशुराम जी ने फेंका उसकी ओर, और कुछ भी कहने के पहले उसको कैच किया उसने, कितना बल रहेगा उसके अंदर सोचो आप। और आगे सुनो उसका पराक्रम, वो दिग्विजय को निकला था ना, तो पहले तो उससे जाके ना एक जगह है, उसका नाम है महिष्मतिपुरी। हाँ सब लोग ध्यान सुना, बहुत ये कंस का गौरव बहुत रोचक है, आपको मजा आएगा सुन के। तो कंस का ये जो महिष्मतिपुरी में गया, वो उधर 5 प्रख्यात मल्ल थे, हाँ, और वो उसने चैलेंज किया, आ जाओ तुम लोग लड़ो मेरे साथ, तुम लड़ोगे मेरे साथ, मुझे हराओगे तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, और मैंने तुमको हराया तो तुम मेरे दास बन जाओगे। और निश्चित रूप से 5 मल्लों को एक साथ लड़ते हुए उन्होंने, कंस ने उनको हरा दिया। अरे क्या बताऊं आपको, वो 5 मल्ल जो ना बहुत भयंकर मल्ल थे, उनका बड़ा इतिहास है, वो गर्ग संहिता में दिया है कौन थे और कहां से आए थे वो, कोई बात नहीं, लेकिन वो विश्व के सबसे बड़े मल्ल थे वो। तो कंस ने उनको नौकर बनाया और घर पे आके अपने पास रखा, जब चाहे जब भी प्रैक्टिस करता था वो युद्ध, मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस उनके साथ में अखाड़े में करता था। तो ऐसे ही अब उनको साथ में के चल रहा था, तो जरासंध की नगरी के पास में आया, वहां पर तंबू ठोका और वहां पर अपना प्रैक्टिस करने लगा। तो जरासंध के पास उस समय कोलिया पीड़ नाम का हाथी था, आप सब जानते हैं उस हाथी को जिसने कृष्ण ने उसका वध किया, वो हाथी जरासंध के पास था, और उसका भी बड़ा इतिहास है, वो कैसा बना वो हाथी, उसके अंदर 10,000 हाथी का बल था, वो हाथी के अंदर, मतलब वो है किंग ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा पावरफुल था वो। और उसको सांखड़ से जरासंध अपने पशुशाला में बांध के रखता था, पता नहीं अचानक वो ऐसा बिखर गया, सांखड़ वाकड़ तोड़ दिया, और भागते हुए ऐसा मैड एलिफेंट ऐसा भागते हुए ना कंस के उस तंबू के ऊपर आया जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये हाथी को आते हुए देखकर ये 5 मल्ल थे ना विश्व विजयी चैंपियन मल्ल भाग गए, उसको खड़े भी नहीं हुए सामने, उसके खड़े भी नहीं हो पाए उस हाथी का आवेश देखकर, कंस वहीं डटा रहा, और वो हाथी को भी गुस्सा आया, अरे मुझे देखकर भागा नहीं आदमी है, चलो अटैक करते उसके पर। तो हाथी ने अटैक किया, तो कंस ने क्या किया, उसकी सुंड पकड़ी और ऐसा उसको गोल 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 घुमाया और घुमा के आकाश में फेंक दिया उसको, ऐसा वो जाके दोबारा गिर गया जरासंध के तंबू में, ऐसा छिन्न विच्छिन्न होके गिर गया वो। जरासंध देखते रह गया, अरे बाप रे कौन है ये, कौन है ये ऐसा व्यक्ति जो मेरे कोला पेड़ को उठाकर फेंक सकता है, इतना बल किसके अंदर है। तो जाके दूत जाके खबर करके आते कि भाई वो कंस महाराज जो है ना मथुरा के, वो आए वहां पर, ऐसा ऐसा हुआ। तो जरासंध ने बोला, अरे ये तो दिग्विजय करने आया है, मेरे पास भी आएगा तो युद्ध करने के बदले में इसके साथ फ्रेंडशिप किया जाए, ऐसे बलवान व्यक्ति के साथ में अगर दोस्ती की जाए ना तो यही राजनीति है, यही बुद्धि का लक्षण है। तो वो क्या करता है, उसके पास 2 लड़की होती है कन्याएं, अस्थि और प्राप्ति, उनको ना अर्जेंट में दुल्हन बनाता है और लेके जाता है। अभी मुझे ना हमेशा ना मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी है कि इतने छोटे समय में जरासंध ने अपनी लड़कियों को क्या बताया होगा कि भाई तुमको शादी करनी है, किसके साथ करनी है, कैसा है, काला है, गोरा है, कहाँ से आया है, किस जात का है, पता नहीं, इन शॉर्ट टाइम व्हाट ही हैड टोल्ड। उनको तैयार किया 2 मिनट के अंदर, और दुल्हन बना के लेके गया, सीधा सीधा शादी करा दिया उनका, दहेज के साथ लेके गया पूरा, हजारों रथ घोड़े हाथी अलंकार वस्त्र वस्त्र गाय वाय सब लेके गया, ब्राह्मणों को लेके गया, सीधा विवाह ही कर डाला। बोलो, पता नहीं उस समय में लड़कियां कितनी सरेंडर हुआ करती थी। हाँ, पिताजी को बोला और एक्सेप्ट कर दिया पूरा, सोचा भी नहीं उसके बारे में। तो जरासंध का वो समधी बन गया, मतलब जरासंध उसके समधी बन गए, ससुर बन गए, हस्ती प्राप्ति उनकी का वाइफ बन गई। और वो आगे चलता गया, अभी क्या कहूँ आपको, जितने भी राक्षस को कृष्ण ने वध किया ना, बड़े लिस्ट है उनकी, थोड़ा देखते हैं, बड़ी बड़ी लिस्ट कौन सी है देखो, केशी, हाँ, द्विविद, शंबरासुर, भीमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालयावन, डेमिगॉड्स, अरिष्टासुर, पुतना, बकासुर, प्रलंबासुर, नरकासुर। अरे बाप रे, वो नरकासुर था ना, वो आसाम में था, प्राग ज्योतिषपुर नाम है उसका, है ना, आसाम, वहां पर ही गया। तो वहां पर पहले बकासुर आया तो उसको खदेड़ दिया उसने, उसके बाद में बकासुर आया उसको भी खदेड़ दिया, अघासुर बकासुर दोनों को खदेड़ दिया। फिर पुतना आई और पुतना को देख के बोला, कम सरे, मैं लड़कियों से लड़ता नहीं हूँ, आई डोंट फाइट विद विमेन, तो मेरी बहन बन जा। तो वो भी फ्रेंड्स हो गए। तो नरकासुर ने सोचा कि अरे बाप रे, अघासुर प्रलंबासुर अघासुर बकासुर पुतना को वश में कर लिया, तो मैं क्यों युद्ध करूं, हाथ बढ़ाया दोस्ती का। नरकासुर ने युद्ध ही नहीं किया, बोलो। और ये महान राक्षस थे, बहुत बहुत बलवान थे वो, ऐसे साधारण नहीं थे। नरकासुर का वर्णन सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। लेकिन नरकासुर ने भी हाथ दोस्ती का आगे किया। जरासंध इतना अभेद्य था वो, अजेय था वो, उसको भीम को भी दम निकला 27 दिन तक मारते मारते उसको, वो डर के दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए कंस के सामने आया। उसके बाद में कंस ने ना सब कुछ राक्षसों को परास्त किया, अपना सबको नौकर बनाया, सबको लेके आगे चला, और बाद में उसने अमरावती पे हमला किया, सभी देवताओं के साथ एक साथ युद्ध किया। और सभी देवताओं को ना क्या बताएं आपको, उस जमाने में एक एक सिचुएशन था ऐसा कि समझो आप युद्ध में हारेंगे ना, एक तो सबकी शिखा हुआ करते थे, तो शिखा है ना हमारा भी, सबकी शिखा हुआ करते थे, योद्धाओं के भी हुआ करते थे, ब्राह्मणों के भी हुआ करते थे। तो जैसे युद्ध में हारने लगेंगे ना, तो वो अपने धोती की जो गांठ है ना वो छोड़ देते थे, और अपनी शिखा को छोड़ देते थे, और दोनों हाथ ऊपर करते थे, मतलब कमर काचनी है ना, वो गांठ मारी हुई धोती की, उसको छोड़ना मतलब क्या, हरि बोल, आई एम सरेंडर टू यू, शरणागत हो गया आपके। ऐसे सभी देवताओं ने अपनी शिखाएं छोड़ दी, सभी देवताओं ने धोतियों की गांठ छोड़ दी, और सभी देवता शरण आ गए। अरे इंद्र के वज्र को भी परास्त किया उसने, पूरे देवता लोगों को उसने परास्त कर दिया, हाहाकार मचा दिया पूरा। ऐसे भयंकर भयंकर राक्षसों को उसने परास्त किया, ऐसा एक कंस महाराज है। और ये तृणावर्ती कहानी सुनो आप, तृणावर्ती को उसने 1,00,000 योजन आकाश से फेंक दिया था, और कृष्ण ने उसको 1,000 योजन से फेंक दिया था, लेकिन कृष्ण से भी अधिक ऊंचाई में तृणावर्त कंस को ले गया था आकाश में, और वहां से उसको पटका था कंस ने आकाश से, सोचो आप, तो इतना बलशाली था वो। ऐसे बलशाली राक्षस को अभी देवकी की शादी हो रही है, हा? ऐसा है कि गर्गाचार्य जो है ना, गर्ग मुनि जी, वो उग्रसेन महाराज के दरबार में आए थे, उनका बड़ा सत्कार हुआ, और उन्होंने उस दरबार में कहा कि जो शूरसेन का पुत्र है वसुदेव, उसके लिए देवक की जो कन्या देवकी है वो सर्वश्रेष्ठ पत्नी है, उनका विवाह संबंध किया जाए। तो गर्गाचार्य की इच्छा के अनुसार देवकी का वसुदेव के साथ विवाह निश्चित हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। और कंस तो अत्याचारी था ही पहले से, उसने उधर मथुरा नगरी में अपने अत्याचार से बहुत हाहाकार मचाया था, बहुत खराब प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो। तो उसका इतिहास ऐसा है कि वो कालयावन था, सॉरी कालनेमी था पुराने जन्म में, और कालनेमी के रूप में विष्णु के साथ में उसने युद्ध किया था, और विष्णु ने उसको मार भी दिया था। लेकिन शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, उन्होंने संजीवनी मंत्र का उपयोग करके उसको पुनः जीवित कर दिया था, फिर वो मंदराचल पे गया था, मंदराचल में कठोर तपस्या किया उसने और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद मांगा कि ये देवता लोग है ना, इसमें से किसी से हाथ से मेरा वध नहीं होना चाहिए। बाद में वो बात आगे दिखी नहीं, मैं ढूंढ नहीं पाया कि वो मर कैसे गया, लेकिन वो वर्णन नहीं आता है गर्ग संहिता में। उसके आगे सीधे वर्णन आता है कि काल नेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया। और अभी देखो कंस के जन्म की कहानी बहुत विचित्र कहानी है। उग्रसेन का बेटा है ना वो, तो उग्रसेन की पत्नी है पद्मावती। ये पद्मावती जो थी ना वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, अपराधी थी, कॉन्स्टेंटली ब्लास्फेमिंग डिवोटीज, हमेशा उसका मुंह में वैष्णवों की निंदा रहा करती थी। इतना बकबक बकबक करती थी वो, कॉन्स्टेंट वो वैष्णव का अपराध करती थी। तो एक दिन वो अपने मायके गई थी, वैसे बड़ी सुंदरी थी वो, बहुत सुंदर थी। तो एक दिन वो मायके गई थी, उग्रसेन जी अब मथुरा में रह गए और वो अपने मायके गई थी। तो उधर ना दो नाम आते हैं, एक नाम है हेती, हेती नामक राक्षस है, और एक नाम है प्रमिलासुर। तो कोई भी हो वो दोनों में से, मतलब एक ही नाम है वो, दो नाम है एक व्यक्ति के। तो वो वहां पर आया और देखा इसका सौंदर्य, इतना देखकर मोहित हो गया ना, इतना मोहित हो गया, बड़ा सिद्ध राक्षस था वो। उसने क्या किया ना, उग्रसेन का रूप धारण किया और ऐसे ऐसे जताया कि तुम मायके चली गई, मुझे रहा नहीं गया, इसलिए उनको मिलने को आ गया। इस तरह से उन्होंने नाटक रचाया। तो पद्मावती बड़ी प्रभावित हो गई, बाप रे मेरे पति इतने प्रेम करते हैं मुझे, तो मथुरा छोड़कर आए, काम वाम छोड़कर, बड़ी प्रभावित हो गई। और उसने उसके साथ शरीर संबंध किया। तो ये वैष्णव अपराध करने वाली और वो पापी दुराचारी, इनके संबंध से कंस का जन्म हुआ है। बड़े सोचने की बात है हाँ, जन्म के समय जो हमारी चेतना होती है ना, मतलब गर्भधारणा के समय पति पत्नी की जो चेतना होती है, उसी प्रकार का अनुकूल जीव जन्म लेता है, गर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए पति पत्नी को गर्भधारणा के समय, गर्भाधान के समय बहुत ही चेतना को तैयार करना, संस्कार करना, वैष्णवों का संग करना, भगवान के नाम का जप करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कौन कभी प्रवेश करेगा, भरोसा नहीं है। वो थी ना कश्यप, कश्यप मुनि थे, उसकी पत्नी थी दीति, दीति वो दीति, और एक थी अदिति और एक थी दानु, तीन पत्नियां थी उनकी मेन। तो दीति से सभी दैत्यों का जन्म हुआ है और दानु से दानवों का जन्म हुआ है और अदिति से सभी देवताओं का जन्म हुआ है, इंद्र का, सभी देवताओं का, बाद में वामन देव का भी जन्म अदिति से हुआ है। तो ये दीति शाम के समय अपने कश्यप मुनि के पास गई और शरीर संबंध की इच्छा प्रकट की। तो कहते हैं वो कश्यप मुनि, अरे भाई ये समय अच्छा नहीं है, ये संधि काल में कभी भी शरीर संबंध नहीं होना चाहिए, इससे राक्षसों की प्रवृत्ति होती है, भूत प्रेत गण जो है वो उनको लेकर शिवजी वातावरण में घूमते रहते हैं, कहीं उनको योनि शरीर प्राप्त हो जाए इसलिए ढूंढते रहते हैं। और उस बदनसीब काल में कोई अगर शरीर का संबंध करता होगा तो उसमें शिवजी के भूत प्रेत गण जो है ना वो प्रवेश करते हैं और वही आगे जाकर राक्षस बनते हैं। जब शरीर प्राप्त होता है तो पहले भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन शरीर प्राप्त होने के बाद में भयक खूंखार राक्षस बन जाते हैं। नहीं मानी वो कामातुराणाम, हाँ न भयम न लज्जा, ऐसे उद्युक्त हो गई थी वो शरीर संबंध के लिए। तो जो शरीर संबंध हुआ ना, अरे क्या कहें, शरीर संबंध होते ही पृथ्वी पर उल्कापात, भूकंप, तूफान, आंधी आने लगा उसी समय। मतलब अभी तो जन्म होने का बाकी है, एंट्री मारा है अभी तक, एंट्री मारते ही भयंकर चिन्ह पृथ्वी पर प्रकट हो गए प्रकृति में। हाँ, गलत समय, गलत चेतना, गलत भावना से किया हुआ संबंध है ना, वो गलत चीजों को आकर्षित करता है। इसलिए कंस का जन्म के ऊपर हमको विचार करना चाहिए कि हमारे घर में कहीं गलती से कंस ना आ जाए। तो इस तरह से ये कंस इतना अत्याचारी था ना, उसने सबसे बड़ी बात क्या है ना, यदि जब ये तपस्या करते हैं और वो बहुत सारा तप करते हैं और शक्तियां प्राप्त करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, वो वरदान और शक्ति प्राप्त करने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका दिमाग जो है ना वो पूरा खराब हो जाता है। तो देखो हिरण्यकश्यप को देखो, 1000 स्वर्गीय साल तपक तपस्या किया, दीमक लग गया शरीर को, बाद में जो वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, बढ़िया शरीर बना दिया उसका, पूरा पुनरुज्जीवित कर दिया उसको। क्या किया उसने, ऐसे ही किया जो रावण ने किया, जो कंस ने किया। अरे सभी देवताओं को पानी भरने लगाया, झाड़ू मारने लगाया क्या क्या करने को, मिनियल सर्विस एकदम घर काम करने को लगा दिया, बोला एकदम पोजीशन डाउन कर दिया पूरा, ऐसा नहीं कि मंत्री बना दिया संतरी बना दिया। इंद्र पानी भरता था उधर, वायुदेव झाड़ू मारते थे, पूरा हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट वायुदेव को दिया था, रावण ने भी दिया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वैसे ही कंस को इतनी सारी शक्तियां प्राप्त करने के बाद ना बहुत झुंड आया, और फिर क्या होता है जब शक्तियां प्राप्त होती ना तो उनको लगता है मैं अभी भगवान बन सकता हूँ, ये विष्णु विष्णु कौन है, ये तो मैं ही खुद भगवान बन सकता हूँ, ऐसे एक गलत फहमी हो जाती है, ईश्वरो हम अहम भोगी तो सभी पहले क्या करते हैं, सभी साधुओं को मना कर दिया, ये यज्ञ वज्ञ करने का नहीं है, विष्णु को उधर पोषण देने का नहीं, यज्ञ से देवताओं को पोषण मिलता है, वो मेरे शत्रु है, यज्ञ बंद करो, नाम जप बंद करो, श्लोक पठन बंद करो, वेद के मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा भय दे दिया सबको ना, सब मथुरा में पूरा यज्ञ वज्ञ बंद हो गया था पूरा, सब देवता भयभीत थे और बहुत सारे अत्याचार किए। तो उसके वजह से पृथ्वी माता गौ माता बनकर ब्रह्मा जी के पास रोते रोते गई, क्यों रोते रोते गई, बोले बहुत वजन हो गया मेरे ऊपर, अरे इतनी धारणा शक्ति प्रदान किया तुमको वजन कैसे हो गया, तो बोलते मैं अनंत धारणा शक्ति मेरे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो चाहे चीज धारण कर सकती हूँ पृथ्वी के रूप में, लेकिन असत्य और पाप को मैं धारण नहीं कर सकती, किसी भी वजह से असत्य और पाप का बोझ मैं नहीं झेल सकती, और अभी पृथ्वी पर इतना असत्य और पाप का आतंक मच गया है कि मुझे रोना आ रहा है, मेरा अस्तित्व ही खतरे में आ गया है, और मेरे ऊपर संत लोग भजन नहीं कर पाते हैं, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी और तभी देवता लोग भी वहां पर आ गए, क्योंकि वो भी परेशान थे, उनको भी बहुत हालत खराब करके रखी थी, तो देवता भी जुड़ गए, ब्रह्मा भी आ गए, ब्रह्मा जी गाय को लेकर वो क्षीर सागर के किनारे गए और वहां पर क्षीरोदक शाही विष्णु को आह्वान किया, हाँ ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यादिष्ट दशांगुलम स्वाहा, ऐसे हम करते यज्ञ। तो वो जो मंत्र है ना, वो मंत्र बहुत पावरफुल है, उसमें क्या बढ़िया वर्णन किया है, भगवान के मुख से कौन आया, ब्राह्मण आया भगवान के बाहु से, बाहु राजन्य कृतः, हाँ और शूद्र कहाँ से आए, क्षत्रिय कहाँ से आए, वैश्य कहाँ से आए, सब कुछ वर्णन किया है। तो वो हमेशा श्लोक गाते हैं जब भी भगवान के विष्णु तत्व को, मतलब विष्णु पुरुष को जब आह्वान करना होता है ना, तो ये पुरुष सूक्त गाते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। कोई भी पवित्र कार्य जो है पुरुष सूक्त के गायन के बिना संपन्न नहीं होता है, इम्पॉसिबल। हर एक कार्य में, अभी देखो उस दिन हमारे मोदी जी वहां पर वो कर रहे थे ना शिलान्यास प्रभु राम के मंदिर का, उधर भी चल रहा था ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्रपाद, सब जगह चलता है वो किसी भी पवित्र कार्य में। तो वो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब लोगों ने पुरुष सूक्त गाया, शिरोदक्षाई विष्णु को पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। तो हर समय जब भी राम का जन्म समय था या नरसिंह भगवान का था या वामन देव का था, हर समय वो जाते हैं उधर, वो उनका फिक्स लोकेशन है, वहां जाके पुकारना होता है, वो पुकारने की जगह है, हाँ वहां जाके खड़ा होना है, पुकारना है, विष्णु भगवान वहां सोए हुए हैं, तो जब जाते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं। हर समय क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में एक टेली मैसेज भेजते हैं, हर समय खुद नहीं आते हैं, एक मैसेज टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं, वो कोडेड रूप में होता है, वो ब्रह्मा जी के हृदय में आता है प्रकाशित, रिसीव्ड द मैसेज, फिर उसको ब्रह्मा जी अनकोड करते हैं, डिकोड करके सबको समझाते हैं, भैया विष्णु का मैसेज ये है, ऐसे ऐसे करना है अपने को, जाओ अभी तुम ये बनो, तुम वो बनो, प्रभु अभी रामचंद्र के रूप में आ रहे हैं, प्रभु अभी नरसिंह भगवान के रूप में आ रहे हैं, प्रभु अभी वामन देव के रूप में आ रहे हैं। हर समय बलि महाराज का आतंक हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का आतंक हुआ, हर समय वही एक लोकेशन है, वहां से मैसेज मिलता है। लेकिन गर्ग संहिता के अनुसार इस समय जब पृथ्वी गई वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में गई, तो शिरोदक्षाई विष्णु स्वयं बाहर आए और दर्शन दिया उनको किनारे में आकर, कभी नहीं आते वो। और उससे जुड़े आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारे देवताओं को लेकर वो गौलोक वृंदावन गए और गौलोक वृंदावन में साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण के दर्शन हुए, गौलोकेश्वर भगवान के, बड़ा सुंदर स्मित हास्य था, कमल नयन थे उनके, उनका दर्शन से इतना आनंद आया सबको। और एक आश्चर्य हुआ कि हमारे क्षीरोद्भवशाही विष्णु महाराज जो थे सीधे विलीन हो गए उनके शरीर में, मतलब गुप्त गायब हो गए, गुप्त उनके रूप में विलीन हो गए। वहां से यज्ञ पुरुष आए, यज्ञ विष्णु मतलब यज्ञ के जो भोक्ता हैं, यज्ञ नारायण जो दक्षिणा देवी के पति हैं, वो पत्नी को लेकर आए और उनके अंदर विलीन हो गए। और सब लोग खाली देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहां से प्रभु रामचंद्र आए धनुष्यमान लेकर, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ, सीता देवी के साथ, अखंड वानर सेना के साथ आए वहां पर, और सबके सब श्री हरि में विलीन हो गए। और एक मिनट, तब तक आप जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? ओके, आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? आवाज सुनाई पड़ रही ना? ओके, आप सब लोग म्यूट हो जाइए, एवरीबडी बिकम म्यूट। ओके, तो मैं कह रहा था कि प्रभु रामचंद्र विलीन हो गए, मुझे म्यूट मत करना भैया मुझे नहीं करना म्यूट, मुझे म्यूट मत करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आवाज सुनाई पड़ रही सबको? हाँ गुड, ऐसे कर दो ऐसे बस, ये होल सेल में म्यूट कर दिया सबको तो मैं भी म्यूट हो गया ओके, तो इस तरह से वराह भगवान, नरसिंह भगवान, जितने भी भगवान के अवतार हैं सभी वहां प्रकट हो गए और सब श्री हरि के अंदर विलीन हो गए। फिर सब इसके बाद में फिर क्या हुआ, तो श्री हरि जो है वो बात करने लगे और उन्होंने फिर सांत्वना किया पृथ्वी का, पृथ्वी को धीरे धीरे दिया और कहा मैं आऊंगा और निश्चित रूप से सब दानवों का राक्षसों का वध करूंगा, पृथ्वी पर धर्मराज स्थापन करूंगा। और उन्होंने सबको वहां पर ना आदेश दे दिए, सभी देवताओं को, किसी को कृष्ण वंश में, किसी को कुरु वंश में, किसी ब्रज के वंश में, कहाँ कहाँ अपने आप को सेटल करना है। हाँ, कुछ कहना चाहते क्या? है ना, हाँ, तो सबको गाइडेंस दे दिया कि किसको किसको कहाँ कहाँ जन्म लेना है, पूरा डिटेल में दिया है गर्ग संहिता में, सब डिटेल में। जैसे विष्णुदेव को अष्टवसुओं के आठवें अश्व को बताया कि तुम विष्णुदेव के रूप में आ जाओ, शिवजी को बताया तुम अश्वत्थामा के रूप में आ जाओ, सूर्य को बताया तुम कर्ण के रूप में आ जाओ, और धर्मराज जो यमराज है उनको बताया तुम धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में आ जाओ, वायुदेव को बताया तुम भीमसेन के रूप में आ जाओ, इंद्र को बताया तुम अर्जुन के वंश में आ जाओ, अश्विनी कुमारों को आदेश दिया तुम नकुल सहदेव बन जाओ। इस तरह से वसुदेव सबको सबको रोल दे दिया पूरा, यहाँ तक कि जितने भी वो ब्रजवासी है ना उनको भी बताया कि तुमको ये बनना है। सूर्य भगवान जो है ना वो कर्ण भी बने और वृषभानु महाराज भी बने, ऐसा है। और बाकी भगवान की आपको अभी आश्चर्य होगा सुनकर, आपको अनंत प्रकार की गोपियां हैं भगवान की। जब ये अनंत शेष के रूप में समुद्र में निवास करते हैं ना, रसातल के नीचे वो गर्भोदक सागर में निवास करते हैं और ब्रह्मांड को अपने शिश में धारण करते हैं, वो जो अनंत शेष हैं उनको देखकर बहुत सारी कन्याएं आकर्षित हो गई थी, नाग कन्याएं, और उनके साथ में लीला करने का प्रपोजल दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं बलराम जी के रूप में द्वापर में आऊंगा ना, तब तुम जाके वहां पर गोपियां बन जाना। तो वो नाग कन्याएं बलराम जी की गोपियां बनी। फिर भगवान राम जब भी गए थे दंडकारण्य में, तभी वो ऋषि जो है ना वो उस भाव में थे, माधुर्य भाव में, तो वो आकर्षित हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमको सीता जैसा आपके साथ संबंध करना है। तो उन्होंने कहा कि अभी मुमकिन नहीं है, जब भी मैं आऊंगा कृष्ण रूप में द्वापर में, तभी आप गोपियां बनकर आना। तो वो कहते हैं ऋषिचारी गोपी। फिर वेद जो है वो वेद भी कहते हैं, भगवान से एक बार मिलते हैं और कहते हैं कि अरे हमारे अंदर से तो आपकी ज्यादा अनुभूति होती नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष से वेदों में आपका वर्णन है, तो वेदों में से आपकी अनुभूति इतनी डायरेक्टली होती नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने उनको ना गौलोक का दर्शन कराया, और गौलोक में उन्होंने गोपियों को गौलोक में भगवान की सेवा करते हुए देखा। तो वो वेद जो है श्रुतियां कहते हैं उसको, श्रुतियां बहुत प्रभावित हो गई, वो देवी के रूप में थी। तो उन्होंने कहा नहीं भगवान, हमको ना इन देवियों की तरह, इन गोपियों की तरह आपकी सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा आप ब्रज में जन्म लेना। उन्होंने तपस्या की है और वहां पर गोपियां बनी है, श्रुति गोपियां, श्रुतिचारी गोपियां। प्रभु रामचंद्र कौशल देश में गए थे, अपनी मैया के मायके गए थे पीहर, तो वहां पर कौशल देश की कन्याएं देखकर आकर्षित हो गई थी, तो वो भी गोपी बनी है, कौशल वासिनी गोपियां। फिर वो मिथिला में एंगेजमेंट के लिए गए थे ना धनुष तोड़ने के लिए, तभी वो जब बगीचे में घूम रहे तभी मिथिला वासिनी कन्याएं प्रभावित हो गई थी उनको देखकर, और विवाह करने आए थे उधर मिथिला कुमारी से, लेकिन बहुत सारी वहां की युवतियां आकर्षित हो गई थी। तो उन्होंने उनको कहा कि आप कृष्ण रूप में आ जाओ, कृष्ण जन्म में आ जाओ। तो वो मिथिला वासिनी गोपियां भी वहां पर थी। ऐसे कई प्रकार की गोपियां हैं, वो सब लोगों को भी वहां पर उन्होंने प्रपोजल दिया कि अभी तुमको वहां पर आना है, सबकी इच्छा पूरी करूंगा मैं, इस जन्म में एक पतिव्रता हूं। तो क्या कहें आपको, मत्स्य अवतार जब समुद्र में थे तभी समुद्र कन्याएं उनको देखकर आकर्षित हो गई थी। ये मत समझना कि फिश अट्रैक्टिव नहीं होता, जब भगवान फिश बनते हैं तो बहुत आकर्षक होते हैं। तो वो समुद्र कन्याओं को आदेश दिया था कि तुम जाके गोपी बनना, तो वो भी वहां पर थी। तो कुछ गोपियां वृंदावन में, कुछ गोपियां नंदगांव में, कुछ गोपियां गोकुल में, कुछ गोपियां इस गांव में, कुछ गोपियां काम्यवन में, एक वहां पर ईशान्य भारत में नंदगोप नाम का व्यक्ति था, वहां पर अकाल पड़ गया तो अपनी गायों को लेकर वो ब्रज में आके बस गया, नंद बाबा ने उसको सहारा दे दिया। तो उनकी जो कन्याएं हुई वो भी एक प्रकार की गोपियां थी, तो पूरा डिटेल में वर्णन दिया गर्ग संहिता में। तो ऐसे विस्तार रूप में भगवान ने अपना प्लानिंग बनाया, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ध्यान रखना प्रभु रामचंद्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे वो, मतलब एक पत्नी व्रत था उनका, आदर्श पति और आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श राज्यकर्ता, शासनकर्ता, ऐसे सब आदर्श का उनका व्यवहार था, हर चीज आदर्श था। तो पूर्ण पुरुषोत्तम के पहलू अलग होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के वही आते, लेकिन वो अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। जैसे मैं भी यहाँ पर घर पे बैठा हूँ, तो मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, मेरे बहुत सारे रोल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऑफिस जाता हूँ तो मैं डायरेक्टर हूँ वहां पर, वो एक प्रकार का काम करता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं लेकिन एक ही अधिकार में करता हूँ, व्यक्ति वही हूँ मैं, लेकिन मेरे रोल अलग अलग हैं। उस प्रकार से जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं तो एक प्रकार का कार्य करते हैं, वन पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शंस, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में वो ऐसी चीजें करते हैं जो कोई नहीं कर सकता, कोई विचार भी नहीं कर सकता उसका। हाँ, जैसे प्रभु रामचंद्र ने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई 1000 रूप धारण कर लिए, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो करोड़ों रूप धारण कर लिए। वो सिंधु नरेश बिमल राजा की कन्या थी, 3 करोड़ कन्याएं थी, वो 3 करोड़ रूप धारण किए और विवाह किया सिंधु नरेश, सिंधु देश जाकर, तभी यहां पर ब्रजलीला भी चल रही थी, तो एक रूप यहां छोड़ दिया माधुरी कृष्ण, गोपी कृष्ण और लीला कर रहे हैं यहाँ पर गोपाल कृष्ण, और दूसरा रूप लेकर उधर गए उसी समय पर, और विवाह करके लेके आए काम्य वन में उन्होंने विवाह किया उनके साथ में, और लेके आए काम्य वन में विवाह, वहां करके यहाँ लेके आए काम्य वन में रास लीला रचाया, उसमें भी 3 करोड़ रूप धारण किए, और जो अश्रु बहे स्वेद बहा उससे विमल कुंड बना, और वहीं पर उन्होंने 3 करोड़ महल बनाए अपनी पत्नियों के लिए, वहीं पर निवास किया एक रूप में काम्य वन में। साथ साथ यहाँ बाल लीला चल रही है गोकुल में और नंदगांव में और वृंदावन धाम में। गोवर्धन को उठाया, हाँ, अपने मुख के अंदर माँ को पूरा ब्रह्मांड दिखाया, पूरा सृजन कंप्लीट ब्रह्मांडों का सागर दिखाया मुंह के अंदर, और खुद को भी दिखाया कि मुंह के अंदर माँ देख रही है। फिर वो विष्णु रूप धारण कर दिया, चतुर्भुज विष्णु बन गए रासलीला में भाग कर। ऐसे अद्भुत लीलाएं, गोवर्धन पर्वत को उठाया, कहीं भी ऐसा लीला नहीं किया भगवान ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भगवान अपने सारे ऐश्वर्य दिखाते हैं, और आप लोगों को समझना जरूरी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम को समझे बिना पूर्ण पुरुषोत्तम को समझना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसलिए नवम स्कंद में सुखदेव जी छोटा सा क्यों ना हो रामायण का उल्लेख करते हैं, पता नहीं कल बताया कि नहीं आपको, मैंने याद नहीं आ रहा मुझे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम पहले क्यों आए पूर्ण पुरुषोत्तम के, ये बताने के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का अभ्यास किए बिना पूर्ण पुरुषोत्तम की महिमा समझ में नहीं आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे नियमावली पालन करना जरूरी क्यों है, मर्यादाओं को पहले अपनाएंगे, मर्यादा में अपने आप को ढालेंगे, तब जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम की लीलाओं को हम समझ सकेंगे, उनका आकलन होगा, उनकी अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा। तो ऐसे प्रभु ने आदेश दिया सबको, तो उस समय एक अद्भुत लीला हुई, राधा रानी भी वहां पर उपस्थित थी। जब ये वार्तालाप संवाद प्लानिंग हो रहा है तो अचानक ना भगवान ऐसा बिजी है एकदम ऑर्डर देने में, ये करो वो करो, तुम ये बनो तुम वो बनो, मैं आऊंगा, तो अचानक राधा रानी बेहोश हो गई। तो कृष्ण को आश्चर्य हुआ, उसको होश में लाया गया, पूछा क्या हुआ, तो कहते कि अभी आप कह रहे हो ना आप जाओगे, तो ये सुनकर मैं, मुझे वो आने वाला विरह जो है ना वो, उसके एंटिसिपेशन में मैं बहुत दुखी हो गई। बोलो क्यों, मैं तो आपके संग में जाने वाला हूँ, पूरी लीला करने वाला हूँ वहां पर। बोले नहीं नहीं, आपका प्लानिंग होगा मुझे लेके जाने का, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, पृथ्वी लोक पर मैं नहीं जा सकती, आई कैन नॉट लीव गोलोक वृंदावन, ये गोलोक वृंदावन यमुना जी गोवर्धन जहां पर नहीं है वहां पर मेरा जाना नामुमकिन है, आई कैन नॉट कम। तो बोले आपके मन के अंदर के विचार को पहले से ही जानकर मैंने पूरे यमुना को, पूरे गोवर्धन को और 84 कोस गोलोक के हिस्से को पृथ्वी पर भेज दिया है, ऑलरेडी डन सर। तो कहते ठीक है फिर मैं आऊंगी, आई विल कम विथ यू। तो हम लोगों को राधा रानी का अनंत बार धन्यवाद करना चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा नहीं होता ना तो पृथ्वी पर वृंदावन नहीं होता, यमुना जी नहीं होती, गोवर्धन भी नहीं होता, बिकॉज शी डिजायर्ड, दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज डाउन हियर। और गर्ग संहिता में पूरा विस्तार में वर्णन दिया है कैसे यमुना जी निकली है वहां से, और पूरा गोलोक का यात्रा करते हुए द्वारका मथुरा अयोध्या वैकुंठ ब्रह्म ज्योति गिरिजा नदी, फिर ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश, फिर कारण सागर के अंदर, फिर ब्रह्मांड, फिर गोलोक, फिर स्वर्गलोक ब्रह्मालोक करते करते कैसे यमुना जी पृथ्वी तक आई है, इसका सुंदर वर्णन दिया हुआ है। 1,000 पहियों वाले और अनंत लाखों सुनहरे सोने के घंटी वाले रथ में बैठकर वो अपनी अनंत सखियों के साथ में निकली है वहां से रथ में बैठकर, और फिर जल रूप धारण करके फिर वो पृथ्वी पर आई है। हाँ, इतना सुंदर वर्णन है उसका। फिर गोवर्धन जी निकले हैं, उसका भी सुंदर वर्णन है कैसे गोवर्धन जी जो द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में जन्म लिया उन्होंने पृथ्वी पर लौकिक रूप से हिमालय के अंदर, फिर उनको पुलत्स्य मुनि लेकर आए हैं श्री वृंदावन धाम में, वहां पर वो भक्ति का बल जो है ना वो यशस्वी हो गया योग के बल के सामने, योग के बल को परास्त कर दिया तुलस्य मुनि के, और भक्ति बल वहां प्रकाशित हो गया। किस तरह से गोवर्धन वहां विराजमान हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आने का प्लानिंग है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो अद्भुत है बहुत उनका। कमाल कृष्ण महाराज का मैंने प्रवचन सुना था बहुत पहले, एकदम पहले दिन जब मैं मंदिर गया था आई लाइफ में, हाँ 4 फरवरी 1984 जब मैं मंदिर गया था, तभी कमाल कृष्ण महाराज का गॉड डेमिगॉड्स और इंकार्नेशन का मैंने प्रवचन सुना था। उसके अंदर वो वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान की लीला जो है ना उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ना नरसिंह भगवान ना वामन देव ना राम भगवान, वो कैनॉट कंपेयर विद कृष्ण लीला। कोई उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हम, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम जब भी पूर्ण लीला प्रकट करते हैं तो उसका अनुभव ही ऐसा होता है। कभी आपने सुना है क्या कि प्रभु रामचंद्र ने माखन चुरा के खाया, ये चोरी किया, औरतों के कपड़े चोरी किए, हाँ कभी सुना है क्या आपने? तो मर्यादा में कैसे कर सकते हो क्या नरसिंह भगवान जो है वो आपके फ्रिज में आकर लोनी चोर रहे हैं? नहीं हो सकता है। एज अ पूर्ण पुरुषोत्तम ओनली वो ये सब प्रकट कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला बहुत सुंदर है, महीन है, महान है। तो सब प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद में सब लोग आके यहाँ पर जन्म लेते हैं, फिर भीष्मदेव का जन्म होता है, जानते हैं ना शंतनु और गंगा जी के बीच में भीष्मदेव जी प्रकट होते हैं, फिर वो स्थापन हो जाते हैं, फिर द्रोण का जन्म होता है भरद्वाज मुनि के द्वारा, फिर इस तरह से पांडवों का जन्म होता है जंगल में, इंद्र और चंद्र और धर्मराज और बहुत सारे देवताओं के मंत्र उच्चारण कुंती देवी करती है, फिर पांडव जन्म लेते हैं, फिर वसुदेव जी यहाँ जन्म लेते हैं। हाँ यदु का वंश का वर्णन भागवत में आया है, वो यदु जो ययाति के पुत्र थे उनको पता था, उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में भगवान जन्म लेंगे। तो बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां हैं। तो तात्पर्य कहने का यह है कि विस्तार से फिर सब सेटिंग होता है और कंस का अत्याचार चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। और इस बीच गर्ग मुनि आते हैं और वो रिश्ता बनाते हैं कि भाई देवकी के विवाह वसुदेव के साथ होना चाहिए, धूमधाम से विवाह होता है। और मैं क्या कह रहा था कि उस समय कंस का अत्याचार इतना जोरदार था तो उसका रेपुटेशन खराब हो गया था, उसकी ख्याति नष्ट हो गई थी। अभी देखो पॉलिटिकल व्यक्ति को एक ऐसा इमेज बनाकर रखना पड़ता है, वो दुष्ट होता है लेकिन वो क्या करेगा, इधर मर्डर करेगा, उधर लूटमार करेगा, उधर स्मगलिंग करेगा, उधर औरतों का व्यापार करेगा, लेकिन इधर जाके गरीबों को खाना बांटेगा, इधर इयरिंग हेड बांटेगा लोगों को, इधर नोटबुक बांटेगा, मतलब कोशिश करेगा कि ये सज्जन आदमी है, लोगों के मन में इमेज बनी रहे। ऐसे कंस की इमेज जो है ना बहुत खराब हो चुकी थी। तो अभी पब्लिक इवेंट तो चल रहा है, राजशाही राजघराने में शादी चल रही है, तो सोचता है कि ये मेरे इमेज को बढ़ाने के लिए अच्छा मौका है। तो वो युवराज है, युग्रसेन का बेटा है वो, फिर भी वो देवकी के नवनिर्वाचित पति के साथ में विवाह होने के बाद सज सज के बैठे हुए हैं, कहते हैं कि मैं हाकूंगा इस रथ को, मैं सारथी बनूंगा। मतलब वो युवराज कभी कर नहीं सकता ऐसा काम, लेकिन अपनी प्रतिमा को उज्ज्वलित करने के लिए, उज्ज्वल करने के लिए वो सारथी को हटा देता है और खुद सारथी बनता है। लोग इम्प्रेस हो गए एकदम, अरे क्या बात है, अपनी बहन की शादी में सारथी बना है, कितना बढ़िया आदमी है ये। ऐसा एक टेम्पररी इधर प्रभाव पड़ गया लोगों का। और बड़े प्रेम से देखो ब्राह्मण लोग सभी लोग है ना वहां पर श्लोक गा रहे हैं और श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, मंगल गायन कर रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, भौतिक दुनिया में भी ऐसा रहता है, एवरीथिंग इज फाइन, सडनली कुछ हो जाता है। हाँ हमने प्लान किया था कि हम अभी पंडरपुर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ जाएंगे, उसके बाद हिमालय जाएंगे और यहाँ पर 2 महीना निवास करेंगे, खड़ा करके कोरोना आ गया, सारे फ्लाइट कैंसिल, सारे ट्रेन कैंसिल, सारे बस कैंसिल, सारे हर चीज कैंसिल, बैठो अपने घर पे, है ना। तो भौतिक दुनिया में कैसे है, पदम पदम यत विपदम तेषाम, कभी क्या होगा आपको लगता है अभी ठीक चल रहा है, उसके बाद में क्या झटका गिरेगा पता नहीं लगेगा आपको। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, इमेज अच्छी बढ़ रही थी, प्रतिमा उज्ज्वल हो रही थी और बढ़िया काम हो रहा था, सब देख रहे थे, शादी हो गई है, इतना मंगलमय वातावरण है, श्लोकों का उच्चारण हो रहा है, पवित्र वातावरण सब भर फैला हुआ है। अचानक आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का रथ तुम हाँक रहे हो उसके आठवें पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध होगा। अचानक अचानक सारा माहौल चेंज हो गया, सारे श्लोक बंद हो गए एकदम, सारे श्लोक बंद, सारे वाद्य बंद, सब बंद हो गया एकदम, कंप्लीट स्टॉपेज, सारा महोत्सव का वातावरण था, डांस सब बंद हो गया। और ये हमारे कंस महाराज अभी तो लगाम लेकर बैठे थे, अपने आप में लगाम को दिया फेंक के, ये लेफ्ट हैंड से अपने बहन के बाल पकड़े जो दुल्हन बन के खड़ी है, और अपना तलवार निकाला उसको मारने के लिए। देखो आप जरा विचार करो, ये इतना अजय योद्धा है ना, इतना लोगों को अपने वश में कर चुका है, इंद्र को भी परास्त कर चुका है, उसकी तलवार की चमक देखकर देवता भी कांपते थे। हाँ, इतना बड़ा महाभयंकर बलशाली राक्षस जो है, इतना पराक्रमी, अभी वही तलवार से अपनी अबला बहन को उसके शादी के दिन में मारना चाहता है। बोलता है ना रहेगा बास ना बजेगी बासरी ना रहेगी बहन ना होगा उसका आठवां पुत्र। तो वसुदेव जी का जो इस पर चरित्र है ना, बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। वसुदेव जी कैसे, देखो जैसे हमारे वो है युधिष्ठिर महाराज, नाम क्या है युधिष्ठिर, अरे युद्ध जैसे वातावरण में भी बहुत स्थिर रहते हैं वो, ऑलवेज अनडिस्टर्ब्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है मटेरियल वर्ल्ड में अगर जीना है तो, डिस्टर्ब होने से काम भी डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, कोई डिस्टर्ब हो गया ना सारा मामला बिगड़ जाता है। उसका मन शांत है ना, वो कठिन स्थिति में भी अच्छे निर्णय लेता है। तो वो जानता है कि ये तो बहुत महावीर है, मैं उसको मार नहीं सकता या रोक नहीं सकता, केवल अभी युक्ति से काम लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें कहता है, अरे अरे कंस तुम इतने बड़े वीर हो, इतने लोगों को परास्त कर चुके हो, एक अबला को मारते हो, क्या तुम्हारी ख्याति होगी, क्या लोग कहेंगे कि इसने एक औरत को मारा, वो भी उसकी बहन थी, वो भी शादी के दिन, क्या तुम्हारी ख्याति होगी इसके अंदर। लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आता उसके। जब आदमी स्वार्थ के द्वारा पूर्णतः प्रभावित होता है, उसको उसके हित की बात भी समझ में नहीं आती है। स्वार्थ बहुत खतरनाक चीज है, स्वार्थ से जब आदमी भर जाता है ना, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, सद असद विवेक बुद्धि, सार असार बुद्धि जो है ना, वो नष्ट हो जाती है। ऐसे हावी है दिमाग में स्वार्थ उसके, मेरे जीवन को हानि करेगा आठवां पुत्र। तो फिर वसुदेव सोचता है कि इसको तो भी शास्त्र की बात दिमाग में नहीं आएगी उसके, उसको व्यावहारिक बात करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल, हाँ एकदम डाउन टू अर्थ बात करनी पड़ेगी, तब दिमाग में आएगा उसके। अभी उसको क्या, किसकी किस चीज की भूख है वो खिलाना पड़ेगा उसको। अभी आप बोलेंगे जलेबी खाओ तो नहीं खा सकेगा वो, तो क्या बोलता है, देखो आपको प्रॉब्लम क्या है, इसके आठ के आठवें बालक की प्रॉब्लम है ना, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं हर एक बालक को आपको लाके दूंगा, हर एक बालक को लाके दूंगा। अभी देखो मैं अगर बोलता ना ये बात कंस को, तो नहीं मानता हूं, हम लोग में से कोई बोलते ना कंस को तो भी नहीं मानता हूं। हाउ विल बिलीव कि आप लाके दोगे, अभी छोड़ दे तो भाग जाओगे कहीं आप, या बच्चे ही नहीं पैदा करोगे लेकिन वो वसुदेव थे, प्लीज अंडरस्टैंड, वसुदेव पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे सत्यवचनी के रूप में, ऐसा उनका करैक्टर था। और सत्यवचनी कैसा, ऐसा नहीं कि अच्छे काल में सुख काल में बड़ा सत्यवचनी है, सत्यवचनी वो होता है जो कठिन काल में भी सत्य को चिपक के रहता है। सत्यवचनी होना सुख काल में तो आसान है बहुत, लेकिन जब कठिन प्रसंग आता है, बहुत परीक्षाएं होती है लाइफ में, बहुत बाका प्रसंग आता है, तभी सत्य पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। और वसुदेव वैसा आदमी था, उसकी ख्याति पहले से ही थी, क्योंकि वसुदेव बोल रहा है तो उसके दिमाग में वो बात घुसती है कि ठीक है भाई तू बोल रहा है तो एक्सेप्ट। तलवार म्यान कर दिया, बाल छोड़ दिए, सारे गाने बजाने वाले अपने आप घर भाग गए, कोई बारात वारात खत्म हो गई, और ये सारथी अपने आप एक रथ लेकर घर पहुंच गए दुल्हन को लेकर। मतलब अच्छी तरह सेरेमोनियसली समारंभ पूर्वक वहां पहुंचना था, फिर वो चावल का माप उसको उलटना था, क्या क्या बड़े विधि विधि बना के रखे थे घर तक पहुंचाने के लिए, विदाई का मौसम था, सारा खत्म, चुपचाप अपने महल में चले गए और वो सीन खत्म हो गया। कंस को बड़ा पसीना आया था, मतलब क्रोध की वजह से शांत जाके घर पे सो गया, मतलब क्या हुआ आज समझ में नहीं आया, अचानक क्या दुर्घटना हो गई समझ में नहीं आया उसको। उसके बाद यथावकाश पहला बालक हुआ। और देखिए वसुदेव का कितना, देखो चरित्र के सुंदर चरित्र है, कितना बेस्ट चरित्र है। बालक का दूध पिलाया माता ने, नाम रखा तुरंत कीर्तिमान, उसको लेकर कंस के पास लेके आए। और कंस बड़ा दरबार में बैठा है, ही कैनॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ, अरे कैसा आदमी है ये, इतना श्रेष्ठ आदमी है, अपने बालक का वध होने वाला है, मैं करने वाला वध उसका, फिर भी मेरे सामने लेके आ रहा है अपनी जबान को सत्य करने के लिए। बड़ा प्रसन्न हो जाता है वो, वसुदेव बढ़िया आदमी हो तुम, जाओ तुम्हारे इस बालक को मैं अभय देता हूँ, वैसे भी मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है, मुझे भय तो आठवें बालक से है। तो वसुदेव बिकम वेरी हैप्पी, घर जाता है लेके बालक को, लेकिन वसुदेव बड़े होशियार है, वो जानते हैं कि इसका माइंड है ना कभी चेंज होगा, उसका भरोसा नहीं है, ही न्यू दैट। और निश्चित रूप से हमारे आराध्य नारद मुनि जी वहां पहुंच जाते हैं। कंस को कहते हैं नारायण नारायण, कंस जो है वो उनकी पूजा वूजा करता है, अरे महाराज कैसे आना हुआ, मैं सोच रहा था कि तुमने कीर्तिमान को छोड़ दिया, अरे ये देवता के वामसो गति है पूरी, हम जानते नहीं, वो ये सब लोग है ना, वसुदेव तो उधर नंदा और ये सब जो सब देवता लोग है, ये देवता लोग अपना पोजिशन ले चुके हैं तुम्हारे नाश करने के लिए, तुम जानते नहीं, वो ऑलरेडी सेटिंग हो चुका है पूरा, कैसे आपको टपकाना है। ये सब सेटिंग हो चुका है, आप जानते नहीं हो, तुमने उसको छोड़ दिया ना, अरे इनकी वाम गति मतलब क्या, उल्टी गति होती है, अरे कमल दिखाया ऐसा हमने, ऐसा कमल दिखाया, बड़ा अच्छा कमल था वो, गोल पंखुड़ी वाला, एक पंखुड़ी को पकड़ा, बोला अभी गिन इसको, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, अभी इसको पकड़, इसको पकड़, इसको पकड़, अरे हर टाइम आठवां पंखुड़ी अलग अलग आता है, एवरी टाइम डिफरेंट डिफरेंट पंखुड़ी इज देयर। तो बोला देखो ऐसा ही है, कहां से गिनती कर रहे हो तुम, स्टार्ट से कर रहे हो कि एंड से कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है कौन सा आठवां है। हाँ बोलते है, आज मुझे समझ में आया कि गुरु क्यों करना चाहिए, टुडे आई एम कन्विंस्ड कि हर एक वास्ते गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु जो बताता है ना वो हमको भी समझ में नहीं आता है, थैंक यू वेरी मच, आज मैंने आपकी बात की समझ लिया है। तुरंत वसुदेव देवकर को अरेस्ट कराया, कीर्तिमान को जाकर जेल में उधर पीस के, शिला पर पीस के खत्म कर दिया। जैसे अभी वसुदेव देखो कितने बुद्धिमान थे, वो तो पूरे साक्षात्कार जीव है, वैसे एकदम नाचते हुए नहीं गए, उनको पता था कि पता नहीं इसका कभी माइंड बिगड़ेगा क्या होगा क्या मालूम, भौतिक दुनिया में कभी क्या बिगड़ेगा, नोबडी नोज, आज आप सोच रहे हो कि अच्छे हो कल क्या होगा पता नहीं है, अगेन सेम थिंग हैपनिंग, कितना डाइवर्सिटी लाइफ में है, जीवन कितना क्या कहते हैं उसको अनप्रेडिक्टेबल है, उसका अंदाज लगाना मुश्किल है कब क्या होगा, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। और जो बुद्धिमान जीव है वो हमेशा इसका साक्षात्कार करते हुए जीता है कि कोई खुशी होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर खुशी बहुत टेम्पररी होती है, तुरंत खत्म हो जाती है वो। तो इस तरह से फिर वो पहले बच्चे को मार दिया, फिर दूसरे बच्चे को मार दिया, तीसरे बच्चे को मार दिया, चौथे को मार दिया, पांचवे को मार दिया, छठे को मार दिया, अरे इतनी क्रूरता से मारा, वो जेल के अंदर ना जो खून के दाग थे ना बालक के, वो भी कभी साफ नहीं किए उसको, उनके सामने ही बने रहे, वो सामने बने रहे उनके आंखों के सामने, मतलब इसको याद है ये कीर्तिमान का खून है, ये इसका खून है, ये उसका खून है, उसको याद था। देखो आप, हमने वो ड्रामा किया था ना, तो वो जेल के सीन में ना छह डब्बे बनाए थे दीवार के ऊपर खून के, कैसा समय बिताया होगा देवकी ने, रोज देखती थी वो, जैसे अभी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है उसकी, तो पहले बेटे का खून का धब्बा रोज देख रही है वो, इमेजिन। तो एक सामान्य प्रश्न मन में आता है कि अरे इतनी कॉमन सेंस है, इतना भी समझ में नहीं आएगा उनको, प्रेगनेंसी होने का नहीं, दे शुड नॉट अलाउ टू प्रेगनेंसी टू हैपन, तो कहां से होगा दूसरा बच्चा, कहां से होगा आठवां बच्चा, होगा ही नहीं कुछ, तो क्या ना उसको मौत का डर होगा ना तुम्हें मौत का डर होगा, फिर देवकी ने क्यों किया ऐसे, वसुदेव ने बालक को जन्म बार बार हर साल में क्यों दिया, क्योंकि आकाशवाणी क्या बोली थी उनको पता था, आकाशवाणी ने डायरेक्टली बोला नहीं था कि आठवें रूप में विष्णु आएगा, लेकिन उनको पता था यदुकुल के माध्यम से पता था कि हमारे कुल में भगवान आने वाले हैं, और वो अगर आठवें में आने वाले हैं तो सातों को होना जरूरी है ना, वो सात के बाद ही आठवें रूप में आएंगे, नंबर चेंज थोड़ी करेंगे वो, उनका जो नियुक्त समय है उसमें ही आएंगे वो, तो भगवान को आने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, सभी संतों के उद्धार के लिए, सब जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने हर साल एक एक बालक को जन्म दिया और ये दर्द सहन किया। कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि देवकी वसुदेव ने इतना कष्ट उठाया हमारे लिए, हम लोगों के उद्धार के लिए, इसलिए वो उनका वध करते रहे, वो सहन करते रहे, फिर बालकों को जन्म देते रहे वो लोग। अभी उनकी कहानी भी है, वो जो 6 बालक थे वो मरीचि के पुत्र थे, उन्होंने अपराध किया था ब्रह्मा जी का, फिर उनको हिरण्यकश्यप का प्रपोत मतलब ग्रैंडसन बनना पड़ा 6 लोगों को, और वहां पर उनको श्राप मिला था कि पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जन्म होते ही तुम्हारी पिता के हाथ से मृत्यु होगी। तो लोग पूछते ना कि नारद मुनि ने आकर ऐसा बाल हत्या के लिए उद्युक्त तो क्यों किया, व्हाई ही इंस्टिगेटेड कंसा टू किल ऑल द चिल्ड्रन, इतने क्रूर कैसे साधु बन सकते हैं। नहीं, शास्त्र कहता है कि नारद मुनि को पता था उनका इतिहास का, उनको तो वैसे ही मरना ही था, और इसके द्वारा ही भगवान का अवतार जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, इसका पाप का घड़ा भरेगा। तो पूर्ण ज्ञान के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ, जो पाप लगता है वो करने पर भी पाप लगता नहीं है। नारद मुनि को पाप नहीं लगा ये सब करने से, बाल हत्या का पाप नहीं लगा, तो उन्होंने इंड्यूस किया उसको कंस को, वो भगवान की सेवा में थे। इसलिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, डोंट एक्ट विदाउट नॉलेज, फर्स्ट गेट नॉलेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और वो नॉलेज प्राप्त होने के बाद ऐसा कार्य करो जो भगवान की सेवा में हो, वो कार्य करो, अपने स्वार्थ के लिए कार्य मत करो। नॉलेज होने के बाद 2 कार्य हो सकते हैं, एक तो आपने नॉलेज प्राप्त किया और उसका एटम बम बना दिया, या तो वो एटम बम बनाया लेकिन उसका विद्युत ऊर्जा के लिए उपयोग किया। हर समय नॉलेज का उपयोग और दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन नॉलेज प्राप्त करना नंबर 1 स्टेप है, और नॉर्मल नॉलेज प्राप्त करने के बाद उसका विधायक भगवान की सेवा में उपयोग करना, यह दूसरा कार्य है। दोनों कार्य नारद मुनि ने किए, इसलिए उनको बाल हत्या का अपराध नहीं लगा है। और फिर 7वें रूप में बलराम जी आए, तभी भगवान ने गौलोक में ही कह दिया था योग माया को, जब मेरे बड़े भैया बलराम जी महाराज 7वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आएंगे, तब आप उनको स्थलांतरित करेंगे, संकर्षित करेंगे रोहिणी के गर्भ में, क्योंकि रोहिणी उनकी मूल माता है। तो जब 7वां गर्भ आया तो देवकी को स्वप्न आया कि मेरा बालक मुझे छोड़ के जा रहा है, शी गॉट अ ड्रीम कि माय बेबी इज लीविंग मी, और वो सच था, उनको आभास हुआ लेकिन वो सच था, उनके गर्भ से बालक गायब हो गया। मथुरा में खबर फैल गई कि गर्भपात हो गया देवकी का, 7वां गर्भ गायब हो गया, मतलब गर्भपात हो गया उसका। होता है ऐसे, मेडिकल में भी पता है कि गर्भपात हो सकता है, हो गया तो क्या करेंगे उसको, बात वही मिट गई, कंस भी शांत हो गया। तो आचार्यगण बताते हैं कि वो 6 बालक जो गुजरे थे वो षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, और देवकी का गर्भ हमारे हृदय की तरह है। हमारे हृदय में जब तक ये 6 शत्रु हैं तब तक भगवान का आविर्भाव नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि बलराम जी संदिनी शक्ति हैं, वो जीव और परमात्मा को जोड़ने वाली शक्ति है, और वो जीव और परमात्मा को जोड़ते समय क्या करती है, वो ये 6 रूपों को नष्ट करती है, और साथ साथ में जो अनर्थ निवृत्ति करते समय अर्थ प्रवृत्ति भी निर्माण करते हैं, यानी कि पैसा नहीं, अर्थ मतलब नम्रता, सहनशीलता, शरणागति, ज्ञान, शुचि और सहनशीलता और आदर पूर्णता, ये जो वैष्णव के गुण है उसको अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं। ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी इसका विशेष विवरण देते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के साथ में अर्थ प्रवृत्ति का निर्माण करना भी जरूरी है, और ये दोनों काम बलराम जी करते हैं, अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति का निर्माण, और ये करने के लिए बलराम जी का आविर्भाव होता है। वो 7वें रूप में आए हैं, और एक बार ये अर्थ अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में अर्थ निर्माण करते हैं, वो जीवन में भक्ति के अनुकूल गुण निर्माण करते हैं, हृदय को तैयार करते हैं कृष्ण को स्वागत करने के लिए। देखो, अनर्थों का निवृत्ति करने के बाद भगवान अवतार होने का कोई गारंटी नहीं है, भगवान के अनुकूल वैष्णव गुण जो है ना वो निर्माण होने चाहिए, सो गॉड विल फील लाइक कमिंग। केवल अनर्थ नहीं है और सद्गुण भी नहीं है अंदर, तो गॉड विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। तो बलराम जी उन सद्गुणों को निर्माण करने के लिए भी सहायता करते हैं, पूरे भक्ति मार्ग के आश्रय हैं बलराम जी, एवरी वे इन एवरी डायरेक्शन बलराम जी हेल्प्स अस टू क्रिएट गुड क्वालिटीज एंड टू डिस्ट्रॉय बैड क्वालिटीज, सो दैट कृष्णा कैन अपियर एंड स्टे विथ फुल साक्षात्कार इन द हार्ट। तो फिर बलराम जी जाते हैं रोहिणी के गर्भ में, और वो श्रावण शुद्ध दशमी के दिन उनका संकर्षण योग माया करती है, और श्रावण पूर्णिमा के दिन 5 दिन में वहां रोहिणी बालक को जन्म देती है, और वो है हमारे बलराम जी महाराज। 5 दिन के अंदर बलराम जी वहां पर प्रकट हुए हैं। उस दिन देखो कितनी सुंदर बात है, रोहिणी और वसुदेव की बहुत सारी पत्नियां हैं, जैसे ही उनको अरेस्ट किया ना तो सब टारगेट किधर था, वसुदेव देव की, ये जोड़ी का जो 8वां बालक है ना वो मेरा वध करेगा, तो सारा अटेंशन उनके ऊपर था। तो वसुदेव बड़े बुद्धिमान है, उन्होंने क्या किया, अपने बाकी पत्नियों को चुपचाप नंद महाराज के पास भेज दिया सुरक्षा के लिए। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज रिलेशनशिप आर सो इम्पोर्टेंट। हाँ, रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, देखो संकट काल में काम आते हैं। नंद से प्रेम था, रिश्ता भी था, चचेरा भाई भी था, लेकिन प्रेम भी था। इतना प्रेम था, इतना विश्वास था कि मेरी पत्नियों को संभालेगा संकट काल में, ये उनके अंदर पूरा विश्वास था। इसलिए रोहिणी अकेली पत्नी नहीं थी, और सारी पत्नियां भी थी, लेकिन वो मेन थी, इसलिए उनका नाम हम पढ़ते हैं। उनको वहां भेज दिया था, वो अपने फ्रेंड के घर में थी, पिताजी अपना पति के फ्रेंड के घर में रहती है, लेकिन नंद महाराज ने उनको इतने प्रेम से रखा था, इतना प्रेम से रखा था, उनको पता था कि ये पति से दूर है, दुखी होगी, श्रृंगार नहीं करेगी, वस्त्र नहीं पहनेगी। हाँ, वो हमारा वैदिक रिवाज है ना, पति दूर होने से कोई पत्नी श्रृंगार नहीं करती है, सज धज के बाहर निकलती नहीं है जब पति नहीं रहता है, पति होगा तो ही श्रृंगार करेगी। तो पता था कि ये दुखी होगी बेचारी, और पुत्र का जन्म भी हुआ है। तो नंद महाराज ने ना कहते हैं 10 लाख गायों का दान दिया, ब्राह्मणों को बुलाया, गोपों को बुलाया, वादकों को बुलाया, नृत्यकों को बुलाया, हाँ बजाने वालों को बुलाया, सबको बुलाया, और बड़ा धूमधाम से गौ बलराम जी का उत्सव मनाया, और रोहिणी को अलंकार दिए, वस्त्र दिए, यशोदा ने सत्कार किया। ऐसा उनको प्रयत्न किया उन्होंने कि उनको अपने पति का न होना उसका परिणाम उस पर न हो, और बालक के जन्म का पूरा आनंद उसको प्राप्त हो। हाउ मच सेंसिटिविटी इज देयर, इमेजिन कितना डीप थिंकिंग है उसके अंदर, कि मेरे पास जो मेरे मित्र की पत्नी अभी रही है, उनकी डिलीवरी हो चुकी है, उसको बालक जन्म हुआ है, तो क्या क्या उनको अभाव होता है वो मैं पूर्ण करूंगा, उसको जितना मेरे बस में हो, मैं तो उसका पति को ला नहीं सकता, लेकिन पति के ना होते हुए जो भी मैं कर सकता हूँ, मर्यादा रखते हुए सब कुछ किया नंद महाराज ने। और बालक के जन्म के प्रति, जो वसुदेव का बालक था बलराम जी महाराज, 10 लाख गौ का दान दिया उन्होंने, और फिर देवल, देवरात, वशिष्ठ, बृहस्पति और वेदव्यास जी महाराज वहां पधारे हैं। वो वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है बलराम जी की, और दर्शन की अभिलाषा की है, और फिर दर्शन देने के बाद में उनका, बलराम जी का तेज से पूरा नंद भवन जो है ना उद्भासित हो गया था, नंद भवन का पूरा तेज प्रकट हो गया था पूरा नंद भवन में, और सब साधु लोग आए हैं, उनको दान दक्षिणा दिया है, उनका सत्कार किया है, पाद्य पूजा किया है, उन्होंने दर्शन की मांग की है, बताया कि जो सबसे दुर्लभ है बलराम जी महाराज, वो आज तुम्हारे घर में यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं, हमको दर्शन कराओ। तो दर्शन कराते हैं, फिर सब साधु लोग प्रदक्षिणा करते हैं, उनका गौरव करते हैं, फिर वेद व्यास जी ने वहां रचा हुआ है बलराम स्तोत्र, बहुत ही सुंदर। तो बलराम स्तोत्र का सोचता हूँ कि आपको सुनाई देता हूँ थोड़ा सा। श्री व्यास उवाच, देवादिदेव भगवन् काम पाल नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षाद् रामाय ते नमः, धराधराय पूर्णाय सुधाम्ने शीरपाणये सहस्र शिरसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते, ऐसे पूरा श्लोक है, और आखिर में लिखा है जो इस जगत में सदाई इस सवन का पाठ करेगा वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त करेगा। शत्रुओं का संहार करने में जितना बल जरूरी है वो सब उसको प्राप्त होगा, और सदा जय विजयी होगा, और प्रचुर धन का स्वामी होगा। ऐसा करके नंद को और रोहिणी को बार बार क्या कहते हैं, साधुवाद देकर वेदव्यास जी संत लोग चले जाते हैं। उसके बाद 8वें गर्भ के रूप में श्री कृष्ण भगवान तेज के रूप में पहले वसुदेव के हृदय में प्रकाशित होते हैं। वसुदेव बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े तेज से दिखाई पड़ते हैं, फिर वो तेज वसुदेव के दिल से निकलकर देवकी के हृदय में आता है, और देवकी प्रचंड सुंदरी हो जाती है, और उसके गर्भ में वो तेज जो है वो स्थापित हो जाता है। यही कहानी हमने कल आपको बताई थी यशोदा के बारे में, अलग तरीके से बताई थी वो। तो वही चीज जो है ना, वो देवकी के गर्भ में जब आते हैं भगवान, तो इतनी सुंदर हो जाती है कि उसका तेज का जो वर्णन है वो पहरेदार कंस से करते हैं। कंस आकर देखता है कि मेरी बहन इतनी तेजस्वी हो गई है, पूरी कारागृह जो है वो काल कोठरी जो है वो प्रकाशित हो गई है और इतनी आनंदित दिखाई पड़ रही मेरी बहन, तो समझ जाता है कि मेरा काल उसमें प्रवेश कर चुका है, मेरा काल प्रवेश कर चुका है और उसका भय का काल शुरू हो जाता है। उसके बाद में जो लिखा है ना भागवत में, आप क्या पढ़ेंगे उसको, ऐसा इज लाइक अ मैड मैन यू नो, इतना बलशाली आदमी जो है ना, इतना बलशाली आदमी है, इतने राक्षसों को वश में कर रखा है, कभी डर नाम का चीज हुआ ही नहीं, अरे को कुलिया पीड़ भी आएगा तो ये डरा नहीं था, इतना भयंकर शक्तिशाली आदमी जो है ना, अभी ऐसा जल ऐसा पानी का ग्लास है ना वो भी ऐसा देख कर फेंक रहा है नीचे उसको, अरे वो मेरा मौत आ गई, मेरी मौत आ गई, पर्दा हिल रहा है तो देख रहा है मेरी मौत आ गई, मौत आ गई, ऐसा भयंकर समय उसने बिताया भय के अंदर। तो भागवत में लिखा है भयात कमसात कामयात गोप्यः, भय के माध्यम से उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन हमको जरूरत नहीं भय के माध्यम से प्राप्त करने की, हमारे पास भगवान नाम है, हमारे पास भगवान गुरु, भगवान सेवा है, भगवान लीला है, हमारे पास भगवान के द्वारा दिए हुए गुरु है, हमको कोई भय से भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं है। वो कंस जैसे लोग है ना उनके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। तो इस प्रकार से फिर धीरे धीरे जैसे गर्भ में वृद्धि होती है, गर्भकाल में, तो वसुदेव देवकी को ये अनुभूति होती है कि सारे देवता गण आकर जेल के अंदर कृष्ण को, पेट के अंदर जो कृष्ण बैठे हैं उनको पूजन कर रहे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं, उसको प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जेल में दिखाई पड़ रहा है, बस आंखों में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अनुभूति हो रही है कि देवता सब लोग, ब्रह्मा आदि शिव आदि सभी देवता लोग आ रहे हैं। देखिए भगवान का आविर्भाव होने से सारी अशुभता नष्ट हो जाती है। अभी वो जेल में है, मतलब सो इनऑस्पिशियस क्या जीवन है क्या, वो जेल के अंदर पड़े हैं, लेकिन जेल के अंदर भी कितने भी कष्टमय काल में भी जब भगवान को अपनाते हैं सब कुछ शुभ हो जाता है, वो जेल भी जो है ना वो प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, वो जेल जेल नहीं रहता है, वो भगवान का निवास स्थान हो जाता है। देखो आप जो जेल के अंदर दुख कष्ट है वो सब मिट जाते हैं भगवान के आने से, ये जो प्रकाश भगवान का फैल रहा है ना तो देवकी सुंदर बनती जा रही है, उसका मतलब क्या है, सारे दुख नष्ट होते जा रहे हैं, उसके कोई कष्ट नहीं है अभी। और फिर जब भी श्रावण वद्य अष्टमी आती है और फिर रोहिणी नक्षत्र है और रात का समय है, उस समय योग माया का काम जो है ना कॉन्टिन्यूस चल रहा है। देखो आप, एक तो बलराम को स्थानांतरित कर दिया, फिर वो पैरदान को सुला दिया, उधर जन्म ले लिया कृष्ण के साथ यशोदा के गर्भ में, हाँ सब इतना अनुकूल वातावरण निर्माण कर दिया, अभी उधर गर्भ में भी है वो और यहाँ पर भी वातावरण निर्मित कर रही है। देखो कैसे समय आ गया भगवान के अवतार लेने का, हाँ भगवान अभी अवतार लेने वाले हैं, तो सारी पृथ्वी पर ना सारे ऋतु एकत्र हो गए। देखो आप, हर ऋतु का एक समय होता है, दो दो महीने का, छह ऋतु हैं, 12 महीने में अपना सेवा देते हैं अपने अपने समय में, लेकिन भगवान को आनंद देने के लिए योग माया के अरेंजमेंट से सारे छह ऋतु अपने अपने बेस्ट चीजों के साथ में प्रकट हो गए एक ही समय पे, एक ही समय पे ऑल सिक्स ऋतुस कम टुगेदर, सारे 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई, हाँ और कमल खिल गए। क्या बताएं आपको, कमल खिलने का रात को क्या काम है बताओ, व्हाई शुड कमल ब्लॉसम इन द नाइट, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, अरे हमारे नाम से भगवान के शरीर के अलग अलग अवयव जाने जाएंगे, यानी चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, तो हमें अभी खिलना ही चाहिए, हमारे नाम का गौरव होने वाला है। और जब भगवान का अवतार का समय होगा, भगवान ने लक्ष्मी देवी को भेज दिया, बोले जाओ मैं गोकुल में पहुंचने वाला हूँ, वहां पर मेरे जन्मोत्सव की तैयारी करो, धूमधाम से मनाना चाहिए, पूरा ऐश्वर्य बिछा दो। लक्ष्मी देवी ने जाकर नंदगांव में पूरा अपना लुटा दिया, पूरा ऐश्वर्य, तो वो यमुना जी से ही गई भगवान को मिलकर, वो यमुना जी के ऊपर से ही गई, तभी यमुना जी में सब जो बंद हुए थे कमल सब खिल गए कि हमारी कमलिनी देवी लक्ष्मी देवी गुजर रही है, उसका अभी पूरा प्रभाव पड़ने वाला है गोकुल में, तो हमें भी हमारे मालकिन के गौरव में खिलना चाहिए, तो रात में बीच में कमल खिल गए। चंद्रमा जो है ना वो खुश है अभी, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान का जन्म हो रहा है, सूर्यवंश में राधा रानी का जन्म हुआ है, चंद्रवंश में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो कहते हैं जब भी हमारे स्वामी पूर्ण चंद्र के रूप में हजारों सूर्यों का प्रभाव लेकर आ रहे हैं तो मैं आधा क्यों रहूं, तो वो आधा का पूर्ण हो गए, चंद्रमा पूर्ण हो गया। आज तक के खगोल शास्त्र के इतिहास में फिर पुराण में कहीं भी लिखा नहीं है कि अष्टमी के दिन आधा चांद कभी पूरा हो गया होगा. दिस इज ओनली कंडीशन, ओनली डे, ओनली सिचुएशन वेयर चंद्र वॉज हाफ बट ही बिकेम फुल टू एक्नोलेज एंड टू ग्लोरीफाई कृष्णा. कृष्ण का गौरव करने के लिए, कृष्ण के आने का समारोह जो है उसको पूरा गौरवान्वित करने के लिए आधा चंद्र पूर्ण चंद्रमा बन गए. अभी देखो रात में सब पक्षी सोते हैं, मोर है, तोता है, कोयल है, सब सोते हैं, दिन में गाते हैं. अरे रात में गाने लगे वो सब लोग क्यों? अरे भगवान आ रहे हैं, सबके भगवान के आने के आनंद में सब रात को उनको क्या प्रेरणा हुई पता नहीं, वो सब रात को गाने लगे. सब पक्षी जो है मधुर मधुर गायन कर रहे हैं. रात के समय कभी पुष्प वृष्टि नहीं होती देवताओं की तरफ से, लेकिन रात के समय बीच रात में पुष्प वृष्टि हो रही है मथुरा वृंदावन गोवर्धन पे, जमुना जी के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है. देव ऋषि हवाई जहाज भर भर के खाली करके वापस जाके भर के लेके आ रहे हैं. वहां पर कैसा है ना, फूल खाली खिलते हैं, मुरझाते नहीं है, करना क्या है इतने फूल का, इसलिए बार बार बरसाते रहते हैं. इस तरह से ऋषि मुनियों ने यज्ञ करना बंद कर दिया था, श्लोकों का उच्चारण करना भर दिया था, पूरे मथुरा नगरी में भय छाया हुआ था. कोई देवकी के विवाह के बारे में बात नहीं करता था, स्ट्रिक्ट ऑर्डर था नो बडी विल डिस्कस, क्योंकि मेरी ख्याति कम हो जाएगी. इसलिए सबको बैन कर दिया था कि देवकी के विवाह के विषय में कोई चर्चा नहीं करेगा मथुरा में, कोई साधु वहां पर जप नहीं करेगा, कोई मंत्र नहीं उच्चारण करेगा, यज्ञ नहीं करेगा. सब यज्ञ बंद थे, जैसे भी कैसे कोरोना में कैसे सब बंद है, मंदिर बंद, यज्ञ बंद, शादी बंद, सब कुछ बंद है. वैसे ही कुछ माहौल था, सब कुछ बंद था. अचानक रात में सब ऋषिगण उठ गए और जो पहले भयभीत हुआ करते थे लंबे समय के लिए, अचानक वो भय रहित हो गए, एकदम भय मुक्त हो गए. उनको भी आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे हुआ, लेकिन वो सोचते बैठे नहीं, भय मुक्त हो गए, तुरंत श्लोकों का उच्चारण शुरू किया, यज्ञ की अग्नि जलाई. देखो रात को कोई यज्ञ नहीं करता है सूर्यास्त के बाद, लेकिन इस दिन बीच रात में सभी साधुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया. यज्ञ का उद्घोष होने लगा. ऐसे ही प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर परिवर्तन हो गए. और एक विशेष बात देखिए, पृथ्वी इतनी पुलकित हो गई, सब जितने भी उसको पृथ्वी को देना ना, ये फल फूल पेड़ सब है ना, पूरे पेड़ सभी फलों से लद गए, फूल सब फूल गए पेड़ों के ऊपर. अब मैं कमल की बात कर रहा हूं, तो जल में होते हैं, लेकिन ये पेड़ों के ऊपर जो वेली के ऊपर फूल है सब खिल गए. रात को कोई रात को खिलता नहीं है. पृथ्वी इतनी आनंदी हो गई. क्यों आनंदी हो गई? क्योंकि पृथ्वी को पता था कि मेरे ऊपर, मतलब ब्रजभूमि, मेरे ऊपर भगवान नंगे पैर घूमने वाले हैं. वो द्वारका नहीं है, वो वैकुंठ नहीं है, वो जगन्नाथपुरी या बद्रीनाथ और रामेश्वर नहीं है, वो वृंदावन धाम है, वो अयोध्या नहीं है. नंगे पैर घूमेंगे मेरे ऊपर, मेरे छाती के ऊपर उनके नंगे पैरों का अलंकार प्राप्त होगा, यही मेरे अलंकार होंगे. इस आनंद से पृथ्वी इतनी प्रफुल्लित हो गई. यहाँ पर ऋतु खड़े हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट एटमोस्फेयर पैदा करने के लिए. यहाँ पर कमल खिल रहे हैं, यहाँ पर पृथ्वी, क्योंकि भूमि देवी है ना, भगवान की पत्नी है, वो अपने पति के आने से बड़े आनंदी हो गई है. शी इज परफॉर्मिंग, मतलब एक नई नवेली दुल्हन जब अपने बहुत देर से आने वाले मिलने वाले पति के लिए कैसे तैयार हो जाती है, वैसे पृथ्वी तैयार हो गई एक नववधु की तरह बीच रात में. और ये सब सीन बाहर बना हुआ है, आकाश में बादल जमा हो रहे हैं. देवता लोग क्या कर रहे हैं, उनके उनके कैपेसिटी में जो भी अधिकार है उसका बेस्ट एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे हैं. तो इंद्रदेव क्या कर रहे हैं, बादलों को भेज रहे हैं, हल्की हल्की बरसात कर रहे हैं. यमुना देवी वहां पर बहुत पहले से आकर विराजमान है. मैंने कहा था ना, इतना जर्नी करके बहुत पहले से आके सेट हो गई. वो उसको पता चला कि अभी भगवान जन्म लेने वाले हैं और वो मेरे अंदर आएंगे, तो वो इतनी व्याकुल है, इतनी उतावली है, तो उनका जल जो है ना ऐसा उछाल रहा है, पूरा आनंद से लहरें उठ रही है उसके अंदर. और बाहर दृष्टि से क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, लेकिन बाढ़ क्यों आ रही है, वो आनंद से उछल रही है, आकाश से वारी बिंदु गिर रहे हैं. फिर बिजली चमकती है, फिर बाढ़ जैसी अवस्था होती है. यहाँ पर भगवान का अवतार होता है. देखिए क्या बताएं आपको, समय समाप्त हो रहा है लेकिन फिर भी बताएंगे जरूर. भगवान का अवतार हो रहा है रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में. भगवान का जेल के अंदर अवतार हो गया. तो भगवान के अवतार होने के लिए कोई शुभ अशुभ जगह नहीं होती है. अरे जहां भगवान अवतार लेते हैं वो जगह शुभ हो जाती है. तो जेल भी पवित्र हो गया. भगवान के होने से जितना भी दुख है, कष्ट है, भय है, अशुभता है, सब नष्ट हो जाता है। भगवान सब चीज को नलिफाई कर देते हैं और सबको शुभ, पवित्र और धन्य बना देते हैं, सक्सेसफुल बना देते हैं, विजयी बना देते हैं। तो चतुर्भुजा के रूप में प्रकट हुए भगवान, हा? चार भुजा वाले घुंघराले बाल, ऐसे नहीं कि रोते रोते बालक जन्म हुए, प्रकट हो गए भगवान। योनि मार्ग से नहीं, दिव्य मार्ग से प्रकट हो गए। उनका वर्णन देखिए आप, कंठ में प्रकाशमान विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर कौस्तुभ मणि रत्नों की माला, चरणों में नूपुर, बाहों में भाजुबंध धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे हैं। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकण हिल रहे हैं। कटी पे, यहां पर कमर में, करधने में जो डोर लगी हुई है, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ प्रदेश में कमलों की माला शोभा दे रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीत वस्त्र था, पीताम्बर, वो स्वर्ण की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। डिफीटिंग द ग्लोरी ऑफ गोल्ड ऑल्सो, इतना तेज था उस पीताम्बर में। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वो पीताम्बर विद्युल विलास के साथ विलसित नील मोगों के समान सौभाग्यपूर्ण नजर आ रहा था। उनके मुख के ऊपर, शिर प्रदेश पर काले काले घुंघराले बाल जो है वो कंधों पर शोभा दे रहे थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार को दूर कर रही थी। जिस प्रकार भगवान के चेहरे पर वो डेकोरेशन किया गया था ना, उसको कहते हैं पत्रावली। जो भगवान के मुख कमल पर हम लोग पेंटिंग करते हैं ना, उसको पत्रावली कहते हैं। ऐसे सुंदर पत्रावली थी कि को अनंत मंडित अभिराम करोड़ों कामदेवों को वहां पर वो डिफीट कर रही थी, क्योंकि कामदेव जो था ना, वो सबसे बड़ा सौंदर्यवती देवता है। ये पत्रावली, केवल पत्रावली देखकर अनंत करोड़ों कामदेव जो है वो डिफीट हो रहे हैं, परास्त हो रहे हैं। और वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव के नेत्र जो है ना, वो आनंद से भर गए। देवकी बहुत प्रसन्न हो गई, हा? और वसुदेव ने एक काम किया, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। वसुदेव ने मन ही मन में 200,000 गाय दान कर ली। कैसे? स्वर्ण का कैप सिंह पर पहने हुए, पैरों में सोने के घुंघरू, गले में सोने की घंटा, और पूंछ पर मोरपंख का अलंकार और रेशमी वस्त्र, ऐसे 200,000 गाय अपने मन में ब्राह्मणों को दान कर दिया उन्होंने। अरे इच्छा होनी चाहिए आदमी को, बहाने तो बहुत है, भाई मैं जेल में हूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। मन में सेवा किया भगवान का, भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, मन की मानस पूजा सेवा करते हैं, स्वीकार करते हैं भगवान। तो इस तरह से बहुत सुंदर भगवान का विग्रह जो है ना, वो प्रकट हुआ। उस समय पर सब पहरेदार सो गए, योगमाया एक्टिव है वहां पर भी, योगमाया ने सभी जो पहरेदार हैं सबको सुला दिया। और उस समय देवकी और वसुदेव का संभाषण हुआ, उसका जरूर वर्णन करेंगे हम, थोड़ा देर और लेंगे लेकिन जरूर वर्णन करेंगे। तो देवकी वसुदेव भगवान को देखकर इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और अभी भगवान खुद बोल रहे हैं, हाँ, भगवान को पता है कि मेरे माता पिता जो वसुदेव देवकी बने हैं, ये मेरे माता पिता हैं और ये भयभीत हैं कंस के द्वारा। तो सबसे पहले वो भय का निवारण करना चाहते हैं। तो कहते हैं, माता और पिता, मैं ही था जो आप जब पृष्णी के रूप में आए थे और सुतपा के रूप में आए थे, तो मैं पृष्णी गर्भ के रूप में पहली बार आपके पुत्र के रूप में आया था। दूसरी बार जब अदिति और कश्यप के पुत्र वामन देव के उपेंद्र के रूप में मैं आया था, और ये तीसरी बार है जब आप वसुदेव देवकी के रूप में आए हो, तब मैं कृष्ण के रूप में आपका बालक बना हूं। आप भयभीत मत होइए, मैं आपके भय का निवारण करने के लिए आया हूं। वसुदेव कहते हैं तत्काल वहां पर भय मुक्त हो गए, लेकिन देवकी पूर्णता भय मुक्त नहीं हुई। वो पूरा भगवान के वचन सुन रही है, भगवान उसको आश्वासन दे रहे हैं, आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी देवकी के मन का भय नहीं जा रहा है, क्योंकि देवकी का वात्सल्य वसुदेव के वात्सल्य से भी श्रेष्ठ है। इसलिए सब कुछ कहने पर भी उसका भय बना रहा, और फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान जो भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन आप बालक बन के आ जाओ, मैं आपको गोद में छुपा लूंगी। तो भगवान कहते नहीं, मुझे आपको तुरंत यहां से गोकुल लेके जाना है। इसके पीछे इतिहास ऐसा है कि पुराने जन्म में वसुदेव देव की तपस्या किया था और भगवान की माता पिता बनने का उन्होंने आशीर्वाद मांगा था। और द्रोण और धरा थे और उन्होंने भी तपस्या किया था, उन्होंने भगवान के बाल रूप में सेवा करने का वरदान मांगा था, वात्सल्य रूप में। तो दोनों ने भगवान के बालक के रूप में अलग अलग आशीर्वाद मांगा है। तो भगवान ने क्या किया, इनके बालक बने और उनके यहाँ जाके रहे और पूरा बाल्यपन का आनंद उनको दिया। देखिए इसलिए ना, भगवान से अगर कुछ मांगते हो, वैसे मांगना नहीं चाहिए भगवान से, ब्रज में वो रिवाज नहीं है भगवान से मांगने का। भगवान को केवल देना है, बस प्रेम देना है, सेवा देना है और क्या क्या देना है वो देना है उनको, मांगना कुछ नहीं है। लेकिन कभी हम लोग मांगते हैं, शहर के लोग, हम लोग शहर के लोग क्या है ना, मुझे दो यही करते रहते हैं। अरे हमको दे 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 बाबा दे दे, यही हमारी प्रवृत्ति है। हाँ सेक्स दे दो, पैसा दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो, प्रमोशन दे दो, खाली दे दो दे दो दे दो, यही मंत्र हमको आता है। ब्रज में वो मंत्र नहीं है, ब्रज में देने का मंत्र है। तो फिर इन्होंने जो तपस्या किया था, अगर आप मांगते ही हो ना तो जरा सोच समझ के मांगा करो, क्योंकि भगवान उसको पूरा करते हैं। इन्होंने मांगा हमारे पुत्र बन जाओ, बोला ठीक है तथास्तु। उन्होंने कहा माता पिता बन के सेवा करना है आपको, तथास्तु। तो यहाँ जन्म दिया, वहां उनका इच्छा पूरा किया, लेकिन तत्काल जन्म लेते ही भगवान चले गए। बोला मुझे ले जाओ टोकरी में डालकर और मैं अभी गोकुल में जाऊंगा, वहां छोड़ के आना मुझे। और वसुदेव देव के यहाँ पर, वसुदेव नहीं, यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पर 11 साल बिताए बालक के रूप में, पूरा आनंद दिया उनको। तो मांग मांग में फर्क होती है और उसकी पूर्ति में भी फर्क होता है। तो वसुदेव ने 2 लाख गायों को दान दिया और गोद में लेकर, कुछ लोग कहते हैं गोद में लेकर, कुछ कहते हैं टोकरी में रखकर उसको लेकर निकले। जैसे ही गोद में लेकर निकले हैं, योग माया के प्रभाव से सारा श्रृंखला टूट गया है, सारे दरवाजे खुल गए हैं। हाँ पूरा जमुना किनारा प्रस्तुत हो गया है उनके सामने और तुरंत ही शेषनाग उनके ऊपर छत्र के रूप में प्रकट हो गए हैं। तो आचार्य बताते हैं, जब हम कृष्ण को अपना सर्वस्व बना लेते हैं और उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पण करते हैं, तभी शेषनाग निरंतर आपकी रक्षा में आपके पीछे पीछे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, भगवान को अपने जीवन में अपना लो, अपना बना लो, उनकी सेवा में रत रहो, आप हमेशा बलदेव जी के सुरक्षा में रहेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। फिर यमुना जी में निकल गए, देख रहे इतना बड़ा उछल रही है कैसे जाऊं। तो जब अंदर जाते हैं ना तो 2 वर्णन उसके आते हैं। एक वर्णन आता है कि वो उन्होंने पैर बाहर निकाला और पैर का स्पर्श जमुना को दिया और जमुना जी धन्य हो गई, रास्ता दे दिया। एक वर्णन ऐसा है कि वो पानी ऊपर 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 आते आते गया तो नाक भी डूब गया, सब डूब गया और उसमें हाथ से बच्चा छूट गया और पूरा पानी में गिर गया, पूरी तरह से पानी में गिर गया। पहले वर्णन में पैर दिए जमुना जी को, इसमें तो पूरा अंग ही दे दिया, पूरा अंग संग दे दिया। जमुना जी तुरंत जन्म कृष्ण का होते ही वो चरणामृत बन गई भगवान का। देखो बाद में तो बहुत छलांग लगाई है उसके अंदर, बहुत क्रीड़ा किया है, बहुत जल क्रीड़ा किया है, बहुत कुछ किया है, तो बनाते रहे, लेकिन पहले ही कितना जमुना जी पर प्रेम होगा भगवान का। देखो आप जमुना जी कौन है, जमुना जी भगवान ने जब गोपियों का निर्माण किया, राधा का निर्माण किया और पहला रास रचाया, तो पहला रास रचाने के बाद में जो स्वेद बिंदु और अश्रु बिंदु इकट्ठा हुए वो तालाब के रूप में इकट्ठा हुए गोलोक वृंदावन में। राधा रानी उसको देखने को आई, कितना सुंदर तालाब बना है, इसको नदी का रूप देना चाहिए, ऐसा वरदान दिया, तुरंत वो प्रवाहित हो गई और नदी बन गई वो। तो राधा रानी और गोपियों का पहला स्वेद बिंदु का प्रकटीकरण है वो है जमुना जी, वो भगवान की सखी भी है। वो इतनी आतुर हो रही है भगवान को स्वीकार करने के लिए, भगवान को स्वागत करने के लिए, इसलिए उछल रही है भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए। भगवान ने अंग संग दे दिया और तुरंत जमुना जी ने रास्ता दे दिया उसको और उस सुंदर वातावरण में रास्ता देकर वो निकल गए और फिर वहां पहुंचे। अभी बहुत समय बीत गया ना, वो रोहिणी के नक्षत्र के 4 चरण है, तो द्वितीय चरण जो है ये सारे गतिविधि में समाप्त हो गया, तृतीय चरण शुरू हो गया और वहां पर यशोदा ने ट्विन्स को जन्म दिया, 2 बालकों को, जुड़वा भाई बहन को। और उसके आगे कहानी आपको मैंने बताई है कि वसुदेव जब पहुंचे वहां पर, सभी लोग वहां पर भी सोए थे, इधर भी सोए थे, बालक को निकालते ही वो बालक जो है वो उस बालक में विलीन हो गया, 2 बालक के 1 बालक हो गया और ये बालिका को लेकर वापस चले गए। वो तो यहाँ पर वापस लौट के आया, वापस यमुना ने रास्ता दिया। जब जेल में प्रवेश किया, एक एक दरवाजा बंद होते गया, श्रृंखलाएं आती गई और खास अंदर के जेल में पहुंच गए, तभी बालिका ने मुंह खोला और अपना सुंदर रुदन किया, मतलब रोई वो जोर से। तब जाकर वो योग माया की इच्छा से पहरेदार जग गए हैं और जाके भाग के उन्होंने खबर दी है कि अरे कन्या का रत्न हुआ है, कंस महाराज भाग भाग के आए और ऐसे ठाका मार के ऐसे अरे देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा था आठवां पुत्र होगा और ये कन्या हो गई। तो वसुदेव देवकी कहती है कि इसको छोड़ दो आप, अभी आपको तो भय पुत्र से था, ये तो कन्या है। लेकिन वो कहता है कि देवताओं की वाम गति है, मैं नहीं चांस लेने वाला। और उसको देवकी मुझे दे दे, इस बालिका को मुझे दे दे। नहीं भ्राता नहीं, मैं वादा करती हूँ इस बालिका को मैं तुम्हारे पुत्र को विवाह में दूंगी जब तुम्हें पुत्र होगा। नहीं भ्राता नहीं, देवकी इस बालक को मुझे दे दे। ऐसा करके खींचता है उसके हाथ से, बहुत चुना झपटी होती है और उसी पत्थर पे उसको पटकने वाला ही है। उस समय योग माया हाथ से निकल जाती है और आकाश में जाकर बहुत सुंदर रूप धारण करती है, अष्टभुजा वाला रूप धारण करती है, शस्त्र धारण किए हुए, बहुत तेजस्वी रूप है उसका। कंस आश्चर्य से आकाश में देखता है, क्या देखता है, सभी देवता उसका पूजन कर रहे हैं, ये भी देखता है, उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उसको पूजन कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। कंस क्या है ना, अब तक किसी को डरा नहीं था, वो पहली बार डर गया वो बेचारा। वो कह रही है मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला कहीं और पल रहा है, अपनी अबला बहन को कष्ट देना बंद कर दे। ये एक वर्णन हुआ, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे गर्ग संहिता में तो उसी देवी ने कहा था कि उनकी अंतरंगा शक्ति भी पैदा होने वाली है, वो भी ब्रज में जन्म ले चुकी है, लेगी आगे जाकर, ऐसा वर्णन किया है। तो वो देवी ने दोनों ऐलान किया है और देवी अंतर्धान हो गई है और वो जो अत्याचारी कंस था ना, वो चरणों में गिर गया है देवकी के तत्क्षण। इतनी देर तक इतना गुस्ताखे कर रहा था वो, बार बार आकर क्रूरता से बालकों को पीसता था, वो चरणों में गिर गया है और बड़ा सिद्धांत बताया देवकी को कि देखो हम सब कठपुतलियां हैं, विधाता के हाथ की कठपुतलियां हैं, हमारे हाथ से विधाता कर्म करवाते हैं, मैंने आपके बालकों को मारा नहीं है, विधाता ने मेरे हाथ से कठपुतली के रूप में बालकों को वध किया है, इसलिए हे देवकी, हे देवकी तुम शोक मत करना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। और देवकी ने तुरंत क्षमा कर दिया, चरणों में गिरा, गिड़गिड़ाया, रोया। अभी हमारे हम सब लोग उसकी जगह होते ना, तो जैसे ही वो झुकता ना, उसके मुंह में लात मारते हम लोग तुरंत। हम क्या बोलते, अब आए उस पार के नीचे, हाँ अच्छे आए हो, फिर लात मारती हूँ मुंह पे तुम्हारे। लेकिन देवकी ने लात नहीं मारा, क्षमा कर दिया उसको। क्यों, आचार्य बताते हैं क्यों क्षमा कर पाई, इतना अत्याचार को अनुभव करने के बाद, हर दिन 9 साल तक उस खून के धब्बों को देखने के बाद में कितना दर्द रहेगा उसके दिल में, कितनी पीड़ा रहेगी, हो सकता है प्रतिशोध की भावना भी हो सकती है, लेकिन उसमें से एक भी नेगेटिव नकारात्मक भावना देवकी ने नहीं दिखाई। क्यों, आचार्य बताते हैं कि कुछ ही समय पहले कृष्ण का दर्शन उसको हुआ था। कृष्ण का दर्शन सर्व पवित्र होता है, सर्व शुभकारी होता है, सर्व सकारात्मक होता है। कृष्ण के दर्शन से उसके हृदय के सारे नकारात्मक विचार, धारणाएं, भावनाएं सब नष्ट हो गई और ऊपर उसका आनंद, हृदय आनंद से भर गया पूरा। सारे जो निगेटिव विचार हो सकते थे वो सब नष्ट हो गए, सारा दुख शोक नष्ट हो गया, आनंद से हृदय भर गया। जब हृदय में आनंद होता है ना, तो आदमी अपराध भी स्वीकार नहीं करता है। इट विल एक्सेप्ट ऑफेंसेस आल्सो, यू हैव टू बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन यू कांट टेक इवन ऑफेंसेस, यू आर मोस्ट फॉरगिविंग। देखो हमको कहा गया लोगों को कि हम क्षमाशील बनना चाहिए, यू शुड बी वेरी फॉरगिविंग इन नेचर, यू कांट बी फॉरगिविंग इन नेचर अनलेस यू आर कृष्णा कॉन्शियस। जब कृष्ण आपके अंदर भावना के रूप में प्रवेश करते हैं तभी आप क्षमाशील बन सकते हो, अदरवाइज क्षमा करना नामुमकिन चीज है। लोग अपने को प्राप्त हुए कष्ट को भूल नहीं सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, लेकिन कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं चेतना में, तब जाकर हम इतने कष्ट के अनुभव के बाद भी लोगों को क्षमा कर सकते हैं। और क्षमा करना ही भगवान की कृपा को आकर्षित करना है। देवकी ने याद थी मन में उसके, हृदय में अनुभव खत्म हो गया था, लेकिन दिमाग में तो याद था उसको, फिर भी उन्होंने उसको दुर्लक्ष करके क्षमा कर दिया कंस को, और कंस है ना उस समय एकदम प्योर डिवोटी बन गया ऑन द स्पॉट। देखो जो आदमी अपने गुनाहों के प्रति महसूस करता है कि मैंने गुनाह किया भाई मुझे माफ कर लो, इज इन बेस्ट कॉन्शियसनेस, इज बेकिंग द फॉरगिवनेस। और एक संत व्यक्ति देवकी जैसी संत जो है उसको क्षमा भी कर रही है, तो फॉर सम टाइम कंसा हैड बिकम प्योर डिवोटी। एक रात के लिए वो प्योर डिवोटी जरूर था। सुबह गया दरबार में और एकदम टॉकिंग लैंग्वेज ऑफ प्योर डिवोटी कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे जो कुछ किया मैंने गलत किया। लेकिन लेकिन भाई और बहनों ध्यान से सुनो, हो सकता है आप प्योर डिवोटी बन गए हो लेकिन आपने कुसंगति को स्वीकार किया तो आपका प्योर डिवोशन जो है वो खत्म हो जाएगा, कुछ चंद क्षणों में खत्म हो गया उसका प्योर डिवोशन। राक्षस लोग क्या बोले, अरे महाराज आप क्या डरते हो, कितना क्यों डरते हो आप, देखो ब्रह्मा जी तो जप में मग्न है, वो तो कभी टाइम नहीं उनको आने के लिए। शिव जी भी अपने डमरू बजाने में व्यस्त हो गए हैं और सभी भक्तों के हृदय में विष्णु छुप गए हैं, और देवता तो आपने उनको परास्त कर दिया है, वो कहाँ खड़े होंगे आपके सामने, आप क्यों डरते हो महाराज, हम है ना आपके सामने। तो उतने में वहां से पूतना आती है, महाराज क्यों डरते हो आप, मैं हूं ना, अरे मैं खेचरी हूं, मैं बच्चों का खून पीती हूँ, और तुमने सुना है ना कि भाई बच्चा जन्म हो गया है, मैं जाकर उनका खून पीऊंगी। तो कंस जो है ना पूरा ऊपर उठ गया, प्योर डिवोटी बना हुआ था, सब खत्म हो गया, बोलते है देव पुतना जा तुरंत, पिछले 10 दिन में जितने बालक जन्म लिए हैं पुरुष हो या स्त्री हो सबको खत्म करो। ये होता है कुसंगति का परिणाम। कभी भी फॉर सम टाइम ऑल्सो कभी भी कुसंगति को स्वीकार नहीं करना, सावधान रहना, क्योंकि जैसे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, जैसे ये सत्य है, लव मात्र कुसंगति, हाँ लव मात्र कुसंग सर्वनाश होए, ये भी सत्य है, लव मात्र कुसंगति से भी सर्वनाश हो सकता है, जैसे लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कंस का ऐसा ही हुआ, दुर्भाग्य था वो, उसका संग खराब था, बहुत भयंकर राक्षसों का उनका संग था, वो उसने बनाए रखा इसलिए उसका सर्वनाश हो गया, नहीं तो अगर वो उस दिन जैसे भावना में रहता ना तो कृष्ण को उसको मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसने अपना संग बनाए रखा। इस तरह से आगे कृष्ण लीला आरंभ होती है, बहुत सुंदर सुंदर लीला आरंभ होती है, और कृष्ण भगवान फिर नंद बाबा वहां पर उत्सव मनाते हैं, 6 महीने तक नंदोत्सव मनता रहा, 7 पर्वत बने रत्नों के द्वारा सुशोभित किए गए, उनको 7 पर्वत धान्य वितरित किया गया, सब गाय बैल भैंस सब दान दिया गया, सभी देवता लोग वहां पर उपस्थित हो गए, ब्रह्मा शिव जी और पार्वती जी अपने बालकों को लेकर वहां उपस्थित हो गए बालक का दर्शन करने के लिए, गोपियां आई सब लोगों ने मक्खन फेंका दूध फेंका दही फेंका, वहां पर दूध का सागर बना दिया, वहां पर नंद महाराज को नचाया, क्या क्या नहीं किया नंद महाराज ने अपने पुत्र के रूप के, बहुत सुंदर नंदोत्सव का तो एक अलग प्रवचन होना चाहिए, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि 6 महीने तक नंद बाबा ने अपने पुत्र का उत्सव मनाया, और 6 महीने के बाद में जब सूर्यास्त होने लगा तो सभी गोपियों ने ब्रह्मा जी को बहुत ताने दिए, बहुत अपशब्द उच्चारण किया, ये ब्रह्मा तो बूढ़ो है, गोए इसकी बुद्धि सटिया गई है, सटिया गई मतलब 60 साल के ऊपर उम्र हो गई उसको भी, सटिया गई मतलब उसका दिमाग नहीं चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम आज के दिन तो सूर्यास्त देर से करना चाहिए था, कम से कम आज का दिन तो सूर्यास्त देर से करना चाहिए था, ऐसे उन्होंने बार बार ब्रह्मा को कोसा। उनको पता नहीं कि 6 महीने में कितने सूर्य ऐसे आए और गए, उनको पता भी नहीं चला। फिर उस दिन का अंत हुआ और 6 महीने के बाद में उत्सव समाप्त हो गया, धूमधाम से नंद बाबा ने गैया बांटी, बैल बांटे, हाथी बांटे, घोड़े बांटे, सब कुछ बांटे, हाँ सब लोगों को बहुत आनंद दिया उन्होंने, और कई 1,00,000 गायों का दान किया उन्होंने, बड़ी धूमधाम से अपना आनंद लुटाया। और फिर अगले साल के बर्थडे के पहले जल्दी 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 में षष्ठी पूजन किया, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे जब मनाते हैं ना तिथि के अनुसार तो षष्ठी पूजन के बिना फर्स्ट बर्थडे मना नहीं सकते, तो यशोदा को याद आया कि वो 6 महीने के चक्र में हमारी षष्ठी पूजन तो रह गया 6 दिन के बाद जो होने वाला था। तो ये एक कथा है, और ये भी कथा है कि 6वें दिन पे पूतना आई थी उसका वध हुआ, फिर 3 महीने के बाद में वो शक्तासुर आया था, ये भी सत्य है। ये सब कल्प भेद है, अलग अलग समय पर अलग अलग भगवान आए हैं और लीला किया है। तो गोकुल में भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में नंद महाराज ने बहुत सुंदर धूमधाम से उत्सव मनाया है। तो हम सब लोग आपको जन्माष्टमी की बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और ये शुभकामना करते हैं कि आप अपने आप को सीमित रखते हुए हृदय के भाव के द्वारा ये जन्माष्टमी को सफल करें। अभी हर समय बाहर जाकर हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ना, मतलब मंदिर जाते हैं, वहां सेवा करते हैं, वहां पर अभिषेक देखते हैं, डोनेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। इस बार आपको भगवान की ऐसी आपके लिए इच्छा है कि आप भाव से महोत्सव मनाइए। सबसे बड़ा उत्सव भाव का होता है, जब भाव बढ़िया होता है तो महोत्सव बढ़िया होता है। तो अभी आप बाह्य रूप में कम, आंतरिक रूप से अधिक उत्सव को मनाइए। हाँ, भगवान को हृदय से रिझाइए, आप नाम जप से रिझाइए, कथा श्रवण से रिझाइए, कथा कथन से रिझाइए, 56 भोग घर में बनाइए और श्रृंगार के लिए जो भी हो सकता है, जितना फूल मिलते हैं उतना श्रृंगार कीजिए, लेकिन भाव से भगवान को अपने हृदय को अर्पण कीजिए। ये भगवान आप भगवान ने एक अनोखी योजना बनाई है हमारे लिए, एक अलग अद्भुत तरीके से जन्माष्टमी का उत्सव बनाने के लिए। और भी आगे बहुत सारी कथाएं हैं, उसको सुनिए। बड़े बड़े वक्ता लोग प्रवचन करने वाले हैं, उसको सुनिए और कथा का आस्वादन कीजिए। कथा का आस्वादन करने से सारे तीर्थों का एक साथ दर्शन करने का लाभ मिलता है, संतों का संग मिलता है, सारे ऋषि मुनि का संग मिलता है जब कथा श्रवण करते हैं। तो आइए, इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्णा।